So, हेडफोन कहाँ है इसका? ऑनलाइन वालों के लिए ओम ओम ओम। परमपिता परमात्मा से मेधा बुद्धि की कामना करते हुए मंत्र पाठ करेंगे। ओम या मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो अस्माभिः ह्य चर्चा चर्चिता तत्र अनेकेषु विषयेषु के विषया तत्र आसन जयदे मोद अन्य कच्छप अकस्मात्
कच्छपम् कच्छपम् अस्ति
यथा हां
यदा सः अस्ति शिरसि अस्ति अभ्यंतर बाहिरम्
कच्छ यद वर्तते ना गुजराते तस्य नाम है कच्छ के ने दो ना गुजराती मोद है तस्य नाम है कच्छ के ने दो ना कच्छ के ने दो ना कच्छ गुजराते यद वर्तते तस्य नाम के नहीं तो ना भूत
कच्छ बाहुल्या
मतलब वो है ना कच्छ
की नदी थी
तो निर्वचनम से आता ना
नदी
कम उदके ना अच्छा भी देख अच्छा
तो ना अस्तु तरी दान कर्मा विदयते इति दान कर्मा विदयते इति हिंसा कर्मा कथम जायते अत्र दान कर्मा वर्तते कथम जायते अत्र हिंसा कर्मा कथम जायते मंत्रेषु इदानीं तो अत्र अधीतम पुनः वेदे आगमिष्यति दयते इति विदयते वा तो कुत्र हिंसा कर्मा वर्तते कुत्र दान कर्मा वर्तते इत्यादि अर्थ वर्तन्ते कथम जायते दहति कर्मा वर्तते कथम पुनः
गुरुवारे ये बनारी संति भीमा भयंकर दावर समझा
अस्तु तो एवं दृष्ट्वा जानम भविष्यति देवता जानात अन्यच देवता किम किम करोति इंद्र किम करोति यदि हिंसा कर्म वर्तते कमपि ताड़यति तो इंद्रैव स्यात् यदि दान कर्म वर्तते तदा
अश्विनी कुमार
इंद्रापि दानमपि ददाति दुष्टान ताड़यति और भक्तान ददति अस्तु तरी अग्रे अद्य वर्तते अस्मिनेव चतुर्थ अध्यायस्य तृतीय पादे सुप्रायणा अस्मिन् यज्ञे विश्रेन्ताम् सुप्रायणा सुप्रायणा अस्य को अर्थ है एक पदी कह नैगम न जायते अस्य को अर्थ है इदानीम याश्क वदति सुप्रगमना अर्थात सु उपसर्ग कस्मिन् अर्थे वर्तते सुष्टु वर्तते यथा मंत्रे यथा सुपायन भव सु पूजार्थम उपायन उपायन प्रापक भव मंत्र संपूर्ण मंत्र तत्र स्वस्ति वाचने वर्तते सुपायन सुनवे और सुपायन अत्र पूजा अर्थे वर्तते सुसहासति कुत्र वर्तते तस्य को अर्थ तो अत्रैव सुप्रायण अर्थात पूजित गतियुक्त प्रकर्षेण आयन गतियुक्ता अस्मिन् यज्ञे विस्रयन्ताम् नाम विव्रियन्ताम् नाम उद्घटिता भवेताम् अर्थात हे ऋत्विज यूयम् अस्मिन् अस्माकम् यज्ञे सुष्टु प्रकर्षेण गतियुक्ता विस्रयन्ताम् अर्थात स्वतंत्र रूपेण कार्यम् कुर्वन्ताम् इत्यर्थ अस्य अर्थ सुप्रायण नाम सुप्रगमना अस्य ऋत्विज विषय चर्चा वर्तते मंत्रे तो हे ऋत्विज यूयम् अस्माकम् अस्मिन् यज्ञे सुप्रायण सुष्टु गतियुक्ता विश्रयन्तान् विशेषेण श्रयन्ताम् अर्थात स्वतंत्र रूपेण कार्यम् कुर्वन्तु इत्यर्थ हाँ सुप्रगमना सुष्टु प्रकर्षेण गमना गतियुक्ता अर्थात कोऽपि बाधा न स्यात् ऋत्विजां कृते अन्यथा सम्यक् यज्ञो न भविता इदानीम् एते ऋत्विजात्र सन्ति अस्माकं यज्ञे ईश्वरस्य यज्ञे के ऋत्विजः अनेकदा मया उक्तम् अग्नि वै देवानां होता भवान् अस्माकं होता भव क्वस्यर्थ चंद्रमा वै चंद्रमा वै अध्वर्यो कस्य ईश्वर यज्ञे अस्माकं यज्ञे भवान् अध्वर्यो भव तो ये जितने भी ऋत्विज हैं तो केवल प्रतिनिधि हैं ये तो नित्य घटना हो रही है उसको बताने के लिए इसके दो विभाग हैं कृत्रिम यज्ञ और नित्य यज्ञ कृत्रिम यज्ञ है वो नित्य यज्ञ है नित्य यज्ञ में जो ऋत्विज भाग ले रहे हैं वो यहाँ भी ले रहे हैं तो यहाँ ऋत्विज जो है वो सृष्टि निर्माण के ऋत्विज हैं यहाँ अप्रायुव अप्रायुव नाम अप्रमादन्त्यः अर्थात प्रमादम अकुर्वन्तः ये प्रमादिना सन्ति तेषां पार्श्वे मृत्यु शीघ्रमेव आगच्छति कथमिति ये प्रमादम कुर्वन्ति तेषां पार्श्वे मृत्यु नाम ना या देवी वर्तते नामनि सा आगच्छति कथमिति अनभ्यासे च वेदानां मनुस्मृतौ वर्तते अनभ्यासे च वेदानां आचारस्य च वर्जनात् आलस्यात् अन्य दोषाच्च मृत्यु विप्रान् जिघांसति जिघांसति नाम जिघांसति हन्तुम् इच्छति तो इच्छन्ति भवन्तः कि मृत्यु आगच्छेत् नैव तो तस्मात् प्रातःकाले सुष्ठुतया जागरणं स्यात् पुनः यदि किं भवति प्रातरग्नि प्रातरिन्द्रम हवामहे ते तो आगतवन्तौ और भवन्तः शयनं कुर्वन्ति तो श्रापिता देवता तो आ गए उनको तो जगा दिया और खुद फिर अपना आलस में बैठ के सो गए तो देवता श्राप देंगे या फिर आशीर्वाद देंगे उनको तो बुला लिया कि आ जाओ प्रातरग्नि आ जाओ प्रातः इंद्र आ जाओ ये भी बड़ा रहस्य है ऋषियों ने जो विनियोग किया वो ऐसे नहीं ये अग्नि क्या है इंद्र क्या है भर्ग क्या है ये सारे देवता कहाँ रहते हैं और कैसे आते हैं और कैसे आप उनको भूल जाते हो केवल नियम है इसके कारण अपना मंत्र पाठ कर लिया पर वो देवता है कहाँ जागने से कैसे प्राप्त होते हैं यो जागार है तम देवता कामयन्ते ऋचा च उसको ऐसा है बढ़िया शास्त्रों की बात चल रही है लक्ष्मी घूम रही है देवता घूम रहे हैं सो रहा है तो फिर क्या होता है माता पिता भी डंडा मारते हैं देवता तो न्यायकारी बुरी तरह पीटते हैं वही बुरी तरह उनका पीटना है कि बुद्धि पीटते पीटते इतनी छोटी सी बची है पहले चार वेद याद हो जाते थे ये देवताओं की उपेक्षा करने से हुआ है सारा पहले चारों वेद याद हो जाते थे, इतनी स्मृति थी, इतनी बुद्धि थी। अगर चरक ऋषि के अनुसार देखे, शरीर भी लंबे चौड़े तकड़े थे, पिटते पिटते इतने से रह गए, है ना, और भी नीचे जाएंगे। कलयुग में तो और भी सुना है कि आगे की उस पे पेड़ पे चढ़ के वो कौन से पे तोड़ेंगे, वो चने के पेड़ पे चढ़ के चने तोड़ेंगे। तो ये स्थिति हो जाएगी। अभी तो बहुत, अभी तो यदि आधी सृष्टि बची और हमारी ये हालत हो गई है तो क्या हालत होगी, आप विचार कर सकते हैं। तो देवताओं को न जानने से ये सारा हो रहा है। संध्या को अगर देवताओं को जान ले तो संध्या में इतना आनंद आता है, घंटा भी कम पड़ेगा। और संध्या का विनियोग आप कर रहे हैं तो बुद्धि तेजस्विता आनी ही चाहिए, स्मृति शक्ति ठीक होनी चाहिए। इसका मतलब यदि नहीं कर रहे हैं तो उपासते नहीं है, केवलम दूरम आसते है। तो उप इति दूर अर्थ, तो दूरम आसते, तो फिर उपासते का अर्थ क्या हो जाता है, दूरम आसते। जब अग्नि तो वहां जल रही है, यहाँ बैठोगे मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो इस जो पास में बैठेगा उसको अग्नि के दो कर्म हैं, ऊष्मा और रूप। आप वहाँ यज्ञोरा, यहाँ ठंड में बैठे रहो, आप अग्नि से कोई असर नहीं होगा। कहाँ सूरज भी अब कुछ दिन और रुक जाओ, उसका भी कोई असर नहीं होगा। सूरज की भी तो वही ले सकता है जो लेना जाने, जो गर्मी सूरज की जो ऊष्मा है वही तो प्राप्त करेगा जो उसको लेना जानेगा। ये तो स्थूल रूप है, सूरज तो आपके अंदर है, ये तो केवल प्रतिनिधि है, उसका बाहर तो वो आपको पता ही नहीं है।
दिक्कत ये है ना, देवताओं का स्वरूप नहीं पता।
देवताओं का, उसके लिए तो फिर वेद पढ़ना पड़ता है देवताओं के स्वरूप को जानने। ये ऐसे नहीं चलेगा, तब तक सो सकते हैं। तब तक तो ये श्रद्धा रखो उनके प्रति कि भाई हमें प्रातःकाल अग्नि बुला ली, इतना तो आपको जानकारी होगी। कोई अतिथि बुला लिया हो और उसको छोड़ के इधर उधर गायब हो जाए तो अतिथि दोबारा क्या करेगा, इतना सामाजिक व्यवहार तो आप जानते हैं ना। कोई अतिथि आपके घर में आया है और उसको जगा करके बैठा करके कि आप गायब हो जाओ, तो इतना सामाजिक व्यवहार तो आप जानते हैं ना। तो देवताओं के साथ इतना कर लें, तब तक
नहीं जानते हैं तब भी वो सुनील कुमार आते हैं तो कुछ तो फायदा होता
ही नहीं।
चलो, अपने ये पूरा विज्ञान है देवताओं का। जब तक हमारे ऋषियों के पास ये था हम सुरक्षित थे। देवानो अब पहले तो 10 सालों से तो आप कभी आपने ऐसी जिज्ञासा नहीं की कि ये आज आप चाहते हैं कि आज ही पता लग जाए सारा, ऐसा नहीं होता। हाँ तो अभी अचानक कैसे मिल जाएगा फिर सारा, अभी अचानक 1-1.5 महीना हुआ, 1.5 महीना भी नहीं हुआ पाठ को, है ना। अभी चाहते हैं कि सारे देवता अंदर आके प्रवेश करके आशीर्वाद दे दे, पढ़ना ही ना पड़े, अब ऐसी भी है कुछ लोगों की स्थिति। तो धीरे धीरे पता लगेगा, शनै पंथा शनै कंथा शनै विद्या अध्ययन। तो विद्या अध्ययन धीरे धीरे करो, मतलब धीरे धीरे का अर्थ ये नहीं कि 1 घंटे पाठ चले पर लगातार लगे रहो, नहीं तो आप तो खुश हो जाएंगे कि धीरे धीरे चले। तो देवानो आगे देखो, अप्रायुवा नाम अप्रमाद्यंत प्रमादम अकुर्वंत देवा न अस्माकं कृते यथा सद्म इद वृद्धे। ये क्या है, सद्म नाम है सदा भी और घर भी है, इत अपि वृद्धे वर्धनाय असन असन नाम संति भवंती व अभुवन अप्रायुवा अप्रमाद्यंत रक्षितार रक्षा करतार है दिवे दिवे प्रत्येक प्रत्येक दिवसे। देवा न अस्माकं कृते यदा सद्मनाम सदा वर्धनाय स्यु अप्रायुः अप्रमादयन्तो रक्षितारश्च अहन्यानि। तो यथा देवतः अस्माकं प्रमादम अस्माकं प्रति अप्रमादम कुर्वन्तः यदा प्रतिदिनम अस्माकं रक्षितारः भवन्ति तथा वयं कुर्मः। ध्यान देने की बात है, देवता जैसे हमारे प्रतिदिन रक्षा करने वाले हों वो काम हमें करना है। मंत्र का ये तात्पर्य है, ऐसे ही मंत्र कह रहा है। आप ऐसे काम ना करें कि आसुरी शक्ति जगे और देवी शक्ति शांत हो जाए, तो फिर देवता क्या करते हैं, देवता कुछ नहीं करते, क्योंकि देवता को तो आपने कुछ दिया ही नहीं, असुरों को दिया, तो फिर असुर करते हैं। और असुर जिसके घर में आ जाए तो उसको पता है, आपको पता लग जाए कि रुद्रदत्त जी को लेते हैं आराम से सो रहे हैं, कोई ब्रह्मचारी इनके कमरे में घुसा, नीचे सांप बैठा हुआ और थुंकार मार रहा है, बड़े प्रेम से सोते रहेंगे, है जी, सत्य बोला करो। नहीं नहीं, आपको पता नहीं ना, वो आके घुस गया और कोई ब्रह्मचारी ने बताया सांप है, वो अल्लाह मचाया, तो आप आराम से सोते रहेंगे क्यों।
मेरे को कोई पहले उसी पे चलता है।
मैं तो ये कह रहा हूं ऐसा सांप आपके कमरे में छोड़ दिया जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर सांप है तब क्या करोगे? वो ब्रह्मचारी चंद्रगुप्त जी खड़े हुए हैं कि मैं तो आ नहीं सकता क्योंकि सांप मेरी तरफ भी देख रहा है और आपको तकत के ऊपर है, उतरते ही काटेगा, है ना? तो फिर क्या होगा? ये ऐसे ही हैं, आसुरी वृत्तियां पता नहीं होती, काट लेती हैं। ये उसी सांप की तरह है, किंतु व्यक्ति को पता होने के बाद तो जागृत हो जाना चाहिए। जैसे उस सांप को देख के हल्ला मचाएगा, तकत के ऊपर उछलेगा, रजाई वजह ओढ़ के कूदेगा ताकि सांप रजाई को काटे, कुछ तो करेगा, पर इसके लिए करता ही नहीं। तो जाग जब जब तक व्यक्ति को पता नहीं था तो अलग बात है, पता होने के बाद इन आसुरी वृत्तियों को उस भयंकर विषैले सर्प के समान ही समझा जाए, क्योंकि हमारी बुद्धि को निरंतर कम करती रहती है, और जिसकी बुद्धि कम हो गई उसका दुनिया में कुछ बचा ही नहीं। इसलिए चाणक्य कहते हैं भाई जाओ, चंद्रगुप्त जी भी जाओ, ये भी जाओ, वो भी जाओ, सब छोड़ के चले जाओ, मेरी बुद्धि मेरे पास रहे, हजारों चंद्रगुप्त पैदा कर लूंगा। और बुद्धि चली जाती तो ना कोई चंद्रगुप्त तैयार होता, ना देश रक्षित होता। तो बुद्धि को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो क्रिया करनी चाहिए जिससे बुद्धि का विकास हो, बुद्धि कम ना हो। सेवा करने से, अच्छी बातों को सुनने से, उनको जीवन व्यवहार में उतारने से बुद्धि का विकास होता है, ये पक्की बात है। ईर्ष्या द्वेष करने से उसका नाश होता है। अब ये समय हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो बात चल रही थी रक्षितार चहन्यानी, तो देवा अस्माकम रक्षितार अप्रमादम कुर्वन्त प्रतिदिनम यथाशु तानी कर्माणि अस्माभि कर्तव्यानि ध्यानेन श्रोतव्यानि। अस्तु तरि अग्रे च्यवन ऋषि वर्तते। च्यवन ऋषि नाम ऋग्वेदस्य एक ऋषि, आयुर्वेदस्य एक च्यवनप्राशस्य भक्षिता, और सत्पद ब्राह्मणे एक ऋषि यह तई तपश्चरति तत्पश्चात तस्य एकस्य राज्य है पुत्रा तत्र गतवन्तः और आगत्य तस्य नेत्रे विकुषिते कृते तत्पश्चात से कुपिता संजाता, उन्हें का कथा वर्तते अश्विनी कुमारौ ये तत्र आगतवन्तौ पुनः तेन युवानं चकरतो एक तत्र तड़ागे आसीत तस्मिन् किंचित् औषधं पातित्वा, और अश्विनी कुमारौ उक्तवन्तौ कि तत्र प्रविश यदा स बहिरागच्छति तदा स पुनर्युवानम् आसीत एवं शतपथ ब्राह्मण कथा वर्तते। नारनौल के पास चौन ऋषि, अरे उस कुएं में फिर तो उसी में कूद के देखते हैं, कभी वही तो कुआं नहीं था,
पहाड़ के ऊपर कुआं भी उसमें पानी है।
अच्छा,
आगे पीछे बढ़ता हो
तो ऐसे ही तालाब कुएं में अश्विनी कुमार ने उसको डुबाया था, नया होकर निकला था, वो तो एक विज्ञान है। वो तो खैर वो कोई कल कपोल वो च्यवन ऋषि के कारण नहीं बढ़ता, वो तो एक हर चीज का स्रोत जो है वो पूर्णिमा में बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा आपे तत्व को ऊपर खींचता है, वो तो एक विज्ञान है। क्या कह रहे थे? तो कभी उसमें घूमने चलते हैं, उस तालाब में कोई ताकत तो नहीं है, हम भी वहाँ एक बार कूद के देख लें ना, ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाई इतिहास है, घटना घटना मतलब ऐतिहासिक घटना शतपथ ब्राह्मण में आई तो सत्य है।
बकरी भी पालते हैं, सारे उसी का पानी पीते
हैं। तो बकरी, अच्छा ये कह रहे बकरी क्यों जवान नहीं रही, बूढ़ी हो गई, ऐसे कह रहे हैं? जो बात बकरी पे घटती है वो आप पे भी घटे, वो जरूरी नहीं है। आप अलग हैं, आपकी प्रकृति अलग है, आपका निर्माण ईश्वर ने विशेष तरीके से किया, बकरी की तरह नहीं किया। आगे चलें। क्या चाहिए आप तत्व तो क्या है? अभी और कुछ दिन रुक जाओ, सारा देवत कांड में खुल जाएगा। च्यवन ऋषि भवति च्याविता स्तोमा नाम, च्यवन ऋषि होता है ये किसका अर्थ दे रहे? च्यवन इति एतद् अनवगतम, कोस्य अर्थ न जायते। तो च्यवन ऋषि भवति च्याविता स्तोमा नाम, प्रापिता स्तोमा नाम, स्तोनामा नाम माने मंत्र समूह नाम, च्यवानम अपि इति अपि अस्य निगमा भवन्ति। तो च्यवन और च्यवान है, एक दीर्घो वर्तते एक ह्रस्व, तो उभौ निगमौ भवतः। युवम च्यवानम सनियम यथारथम पुनर्युवानम चरताय ततक्षु तक्षतु। ये कह रहे युवम च्यवानम, हे अश्विनौ युवम आप दोनों ने चैवानम संयम, संयम कहते पुराण नाम में पढ़ा है, किसी को याद है पुराण नाम कितने हैं? पुराण के नाम है षड पुराण नामानी, तो संयम नाम है पुराणम। यथा रथम कोऽपि रथकार है, यथा पुराणम रथम किम करोति पुनर्युवानम चरताय चरणाय तक्षतु तस्य तक्षणम करोति। कोई गाड़ी क्या है ठीक से नहीं चल रही, रथ ठीक से नहीं चल रहा, तो सर्विस कराने ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे, तो वो अच्छा कारीगर क्या करेगा, उसको नया जैसा बना देता है। तो ऐसे ही हे अश्विनव देवते, आपने जो है इस बूढ़े च्यवन ऋषि, बूढ़ा मतलब यहाँ तो कोई ऐसा अभी है निवान प्रस्थी भी, इससे भी भयंकर बूढ़ा था, चला नहीं जाता था, जर्जर हो गया था, खाल लटक गई थी, ऐसे बूढ़े च्यवन ऋषि को अश्विनी देवता ने पुनर्युवा, युवा कब से प्रारंभ होता है? 16 से लेके 25 तक की जो अवस्था है वो युवावस्था है, मतलब जब तक धातुओं का विकास जब से पूर्ण प्रारंभ होता है और जब तक होता है, तो 25 तक आयुर्वेद मानता है। 16 से 25 का बना दिया, एक 90, 100, 150, 400 जितने साल का भी होगा वो लिखा नहीं हुआ कितने का था, बूढ़ा था तो आज कई बूढ़ा, तो उसका बूढ़ा जो होगा पुराना लाख वर्ष पहले बूढ़ा तो कम से कम 300 साल में होता होगा, तो उसको पुनर्युवा युवानम चरता है तक्षतु, जैसे उसने रथ को छील के बना दिया ऐसे अश्विनी देवताओं ने बना दिया। इसी का नाम च्यवनप्राश है, किससे बनाया था? आयुर्वेद का ऋषि, मतलब तीन कथाएं हैं इसमें, आयुर्वेद का ऋषि मानता है कि उसको च्यवनप्राश खिला करके अश्विनी देवताओं ने नया बनाया था। शतपथ ब्राह्मण का ऋषि मानता है कि उन्होंने कुछ औषधियों का प्रयोग किया था और वो तालाब में डाल दी थी और वो औषधि उसको पिलाई भी थी, तालाब में डालने के बाद उसकी जो खाल है वो सारी उतर गई थी, दांत गिर गए थे, बाल गिर गए थे और पुनः सारे नए आ गए थे। ये दो कथा है, वेद में इसका पूरा सूक्त है, वेद निकालिए तभी पूरा सूक्त समझ में आएगा। कौन सा है मंत्र संख्या? 10:39:4 निकालिए तभी मूल से समझ में आएगा कहना क्या चाह रहे हैं। किसी को? विक्रम जी आप तो खैर इतने बूढ़े नहीं हुए इसलिए आपको तो अभी अपेक्षा नहीं है। अच्छा है, करना है कायाकल्प जी, ये है तो ऐसे ही, वैसे टीवी वाले दिखा तो ठीक रहे। तो अब देखिए काक्षीवती घोषा, ये महिला इसकी ऋषि का है, हाँ काक्षी नाम है दीप्तिमती और घोषा उसका नाम है, घोषिर अविशब्द ने तो उससे घोषा बनेगा, घोषयति थी घोषणा करने वाली या निर्घोष करने वाली। और अश्विनव देवते हैं और जगति छंद है, यानी अंतिम अवस्था की बात चल रही है, मंत्रों की अंतिम अवस्था जगति छंद में ही है तो बात भी अंतिम अवस्था की चल रही है, और अश्विनी देवते सूर्य से संबंधित है इसलिए जगति छंद है, जगति छंद अंतिम होता है ना, तो छंदों की अंतिम अवस्था है, ऐसे उसके शरीर की अंतिम अवस्था है जिसको युवान बना रहे। तो अब कह रहे हैं युवम, पूरा मंत्र देखें, अंधस्य कहा है मंत्र, हाँ युवम च्यवानम संयम यथारथम पुनर्युवानम चरथाय तक्षतु निष्टौग्यम उहतु अद्भ्यस्परी विश्वा इत है, विश्वा इत विश्वानी इत ता वाम सवनेशु प्रवाच्य। भाई ऋग्वेद तो लेके बैठा करें ना, जब सबको कहा कभी भी हम मंत्र चला सकते हैं तो सबको, जब ऋग्वेद यहाँ से मूल संगीता दिलाई गई थी तो लेके क्यों नहीं आते, रोज हमारा तो मंत्र चलता ही ऋग्वेद से तो एक आध, तो जो भी ऐसा होता है। तो अब इसकी अवस्था देखें, युवम च्यवानम हे अश्विनव, हे अश्विने युवम आप दोनों ने च्यवानम च्यवन ऋषि को संयम जो पुराना था उसको, तो संयम का संयम किसका विशेषण है? च्यवानम का। यथा रथम, रथम इव पुनर्युवानम पुनः बाप फिर युवानम युवा रूपीम चरथाय चरणाय चरगति भक्षणाय तस्मै अर्थाय तक्षतु, तक्षत नाम तक्षु तनुकरण, छील छील के बना दिया, जैसे कोई कारीगर पुराने रथ को छील छील करके नया बना देता है उसी प्रकार हे अश्विनी देवते आपने इस बूढ़े च्यवन ऋषि को नया बना दिया। और आपने क्या क्या किया, च्यवन का तो कार्य पूरा हो गया, ये इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, फिर प्रार्थना करेंगे जब आपने इनको कर दिया तो हमें भी कर दो, है ना। पहले तो बताएंगे ना उनकी महत्ता जगाते हैं, तो आप कोई सामान्य नहीं है, आपने उसको ये किया, एक की आंख चली गई थी विजासुर की, उसकी अंधे को ठीक कर दिया, वो जो तुग्र था वो समुद्र में डूब रहा था उसको ऊपर उछाल दिया और फिर नीचे आ गिरा वो भूमि पे, और ऐसे ऐसे आपने इतने महान कार्य किए हैं, तो हमारी तो थोड़ी सी समस्या है, थोड़ा बहुत खांसी वासी रहती है, इसको ठीक कर दो। तो ये ऐसी प्रार्थना है। च्यवन ऋषि जो बूढ़ा है, आदि देविक अर्थ में प्रकृति का एक तत्व है जो शरीर में बुढ़ापा पैदा करता है, उसका नाम है आप। हाँ, च्यूंगत। तो वो आप तत्व ही बुढ़ापा, आप तत्व की कमी होने से बुढ़ापा आता है, और आप तत्व का विकास करने से बुढ़ापा जाता है। कोई फूल सूख रहा है, पानी डाल दो, क्यों जी, हरा भरा का पेड़ सूख रहा है, पानी डाल दो, तो किसकी कमी थी, अग्नि से तो सुखा रखा था। बाल सफेद होने का और गिरने का भी एक कारण है कि पित्त ने बालों की जड़ों को जला दिया है, आधा जलाया तो सफेद हो गए और पूरा जलाया तो। इसमें और जिनकी पित्त प्रकृति होती है उनको ये काम थोड़े जल्दी हो जाते हैं, जिसकी कफ होती है उसको थोड़ा देर से होता है, क्योंकि आप ऐसा तो जलाने नहीं देता इतनी जल्दी, पित्तकार दोनों का संघर्ष है ना, अग्नि और जल की हमेशा शत्रुता है, वैसे तो जल के अंदर अग्नि रहती है। और आगे देखो आपने क्या किया, तोग्रम, तुग्रस्य युवापत्यम तोग्रम, नी को साथ में आगे जुड़ेगा, उहतु नि उहतु निश्चयन उहतु, उहतु नाम है नि हृतवंतौ, आपने उनका हरण कर लिया, किसका, तोग्रे का, जो समुद्र में डूब रहा था उसको आपने बचा दिया, अर्थात ये समुद्र में डूबते हुए को भी बचाता है, तो जो कोई समुद्र में डूब रहा हो तो वो अश्विनी देवताओं को पुकारे, वो आके बचा लेंगे। तुग्रस्य पत्यम, तुगिगत जान गमन प्राप्ति करने वाला जो था उसकी जो संतान है उसी को बचाता है, सामान्य को नहीं बचाता, सामान्य तो पैदा ही मरने डूबने के लिए होते हैं। और अध्यस परी, कहां से बचाया आपने, अध्य और जलों से ऊपर कर दिया, ऊपरी कर दिया। और विश्वाइत, विश्वाइत नाम है विश्वानी, सी का लुक किससे हो गया, विश्वा कैसे बचा, विश्वानी था शेष छंद से, तो घबरा क्यों रहे हैं बोलते समय, विश्वा ऐसा बहाने मत बनाओ कि आप तत्व के कारण भूल रहे हैं, ये तो कोई चीज बचा देते आप लोग अपने ऊपर घटा लेते हो कि हमारे अंदर तो ये कमी है इसलिए भूल रहे हैं, इससे बुद्धि और कम हो जाएगी। ता यानी तानी वाम सवने सुप्रवाच्य, तानी, तानी नाम है कर्माणी, वो आपके जो कर्म है ना वो बड़े बड़े सवनों में, कि भाई अश्विनी देवता क्या क्या करते हैं, बड़े बड़े यज्ञों में इनकी कथाएं गाई जाती हैं, इनको गाथा बोलते हैं। ताम वाम तानी कर्माणी यानी पूर्वोक्तानी वाम आप दोनों के सवनेशु अभिशवनेशु सोमयागेशु प्रवाच्य प्रवक्तुम योग्य, तो ये आपके जो कार्य हैं ये बड़े बड़े सवनों में गाने चाहिए। इसका अर्थ क्या है, अगर आप अश्विनी देवता को जानेंगे तो यही बताते कि भाई उसका भी किया, इसका भी किया, इसका भी किया, अर्थात जिसने अश्विनी देवता को ठीक से जाना उसने उसको लाभ दिया, आप जानेंगे तो आप भी पुनः युवा हो जाएंगे। मैं खोज में लगा हुआ हूँ, रसायन इसलिए बनाया हुआ, 6 फुट नीचे दबाया हुआ है अश्विनी देवताओं से प्रार्थना करके, है ना, अभी निकालेंगे उसको 29 तारीख को। थोड़े थोड़े मिले हैं अभी, पूरा प्रकट नहीं किया, उतत्व पश्चिन्न दर्शवाच उतत्व सिन्न सिन्नोत्ती नाम, तो वो वाली बात है, अभी पूरा स्वरूप नहीं खुला उनका, खुल जाएगा
तो उसी का लाभ करते हैं या वो किसी दूसरे का करवा भी सकता है,
ये तो पता नहीं, वो तो अश्विनी देवताओं से पूछना पड़ेगा, मिलने के बाद बताएंगे। तो ये हमने जाना मंत्र के माध्यम से, ऋग्वेद मूल से, नहीं तुग्र का अर्थ के इन्होंने क्या किया हुआ है, तुग्र का अर्थ तो वैसे दीप्तिमान होता है और गतिमान भी होता है, ज्ञान गमन प्राप्ति करने वाला भी साहित्य में मिलता है। यहाँ क्या किया हुआ इन्होंने देख लेना, मैं तो जो अब वैश्यवर कैसे घटेगा, तो उसकी संतान को धनवान दे दे देगा अश्विन को, अब आप बोल दो मैंने तो ऋग्वेद रख दिया जी। निस्तौग्र्यम नाम तुग्रस्य अपत्यम तौग्र्यम तस्य अपत्यम युवापत्य नी को नी नी उहतु उसके साथ में जोड़ दीजिए उसको, तो उहतु नाम है निष्कासित वंतु, आपने क्या किया जो कहाँ से अध्यस परी जलों के बीच में जो वो डूब रहा था अध्यस परी, तो तौग्र्यम तुग्र का जो अपत्य है वो जो भी हो तुग्र तुग्र है उसका अपत्य, उसकी जो संतान उसकी जो शक्तियां हैं वो नष्ट हो रही थी। अपत्य का अर्थ वेद में हमेशा समझना चाहिए उस पदार्थ की शक्ति जो तुग्र है, क्या पदार्थ है वो तो वेद पढ़ने से पता लगेगा, जब पूरा सूक्त पढ़ेंगे वो तो यास्क ने भी नहीं बता रखा, मैं तो अतिरिक्त बता रहा हूँ, वो तो यास्क ने भी नहीं बताया तुग्र क्या, इन्होंने तो पूरा मंत्र ही नहीं दिया। वो तुग्र अश्विनी देवता जिसको बचाता है वो तुग्र है, मतलब तुग्र नहीं तौग्र है, उसके पिता को नहीं बचाता उसको बचाता है, अर्थात उसकी शक्ति की रक्षा कर रहा है, तो उसकी रक्षा अपने आप ही है। यहाँ पत्नी शब्द वेद में आएगा तो मतलब रक्षिका, उसकी जो शक्तियां हैं, वैसे इनके वो पति पत्नी और भाई संबंध नहीं है, सारे ये रक्षा करने वाले हैं। तो तौग्र्यम नाम है तुग्र का जो अपत्य है, न पतति अनेन इति, ये ध्यान देने की बात है जो पहले निर्वचन आया था, अपततम भवति न पतति अनेन इति, जिससे व्यक्ति की गिरता नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है वो गिरता नहीं है, तो उसकी संतान है। हाँ विश्वा नाम है विश्वानी, इत अपि ता तानी तानी कानी कर्माणि सवनेशु प्रवाच्य वक्तुम योग्य, तो बड़े बड़े यज्ञों में ये आपकी शक्ति को लोगों को बताने देना चाहिए कि अश्विनी देवता ये करते हैं, और बड़े बड़े समुदाय में इनकी प्रशंसा करनी चाहिए ये कैसे करते हैं, ताकि वो विचार करें और जो शक्तियां उनके पास हैं वो अपने अंदर आदान करें और युवा रहें। ये ऋषियों के पास थी इसलिए 400-400 साल जीते थे। इन्होंने क्या लिखा है देखिए, दोनों लिखा है, दोनों का एक ही अर्थ माना है, नहीं इन्होंने क्या लिखा है, च्यवन ऋषि भवति च्यावितः इति, च्यवानम अपि इति निगमः भवति, वही उसी के अर्थ में इसके मंत्र है। च्यवन भी है वो पहले मंडल में है, पर च्यवन और च्यवान में अर्थ में अंतर नहीं है, खुद क्या करें ना, दूसरी पंक्ति देखिए, च्यावितः स्तोमानाम च्यवानम अपि इति निगमः भवति, अर्थात अस्मिन् अर्थे च्यवन इत्यस्य अर्थे च्यवानम अपि भवति वेद, केवल दीर्घ ही तो हुआ है बाकी तो। हाँ ऋषिर्भवति एक प्रकार का प्राण है ये, जिसमें कमी आने से बुढ़ापा आता है, ये इसका विज्ञान है। ऋषिर्भवति ऋषि एक प्राण होता है, कितनी बार तो मैं 500 बार तो अभी तक बता चुका हूँ कि ऋषि एक प्राण का नाम है, च्यवन मतलब एक प्राण है जो शरीर में बुढ़ापा जिसके कारण आता है, जिसका ह्रास हो चुका है उसको नया करता है, सीधा इसका विज्ञान है। हाँ वो ही है, सूर्य में क्या है, अग्नि तो बनती है क्या, अग्नि से तो प्राण बना है, मतलब प्राण हमेशा आप तत्व से ही बनता है, अग्नि तो उसको विकास करती है, तो जब वहाँ कमी आ जाएगी तो सूर्य भी बूढ़ा हो जाएगा, वो भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, हमारे शरीर में कमी आ गई तो हम भी बूढ़े हो जाते हैं, बुद्धि से तो बूढ़े हो ही रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कोई बुद्धि से बूढ़ा ना हो, बुद्धि से तो सारे बूढ़े हैं, शरीर से जल्दी हो ही जाएंगे, क्यों जी बुद्धि से बूढ़े हैं नहीं है, अभी नहीं हुए तो स्मृति तो ऐसी लग नहीं रही, जो पूछते हैं वो गायब हो जाता है,
बूढ़ा तो तभी हो जाए जब पूरी विद्या आ जाएगी।
अच्छा
जय भगवती वही वाला पिता भगवती,
वाह जय हो मनु महाराज जी की जय हो। तो आगे चले, युवम च्यवानम सनियम यथा रथम पुनर्युवानम चरथाय ततक्षु भवंत एवमेव भवंतौ कृतवंतौ, युवम च्यवान च्यवनम च्यवानम का च्यवन किया इन्होंने, सनियम पुराणम यथा रथम पुनर्युवानम चरणाय तक्ष तक्षतु ततक्षतु पुनर पुनर इत्यर्थ है। युवा प्रयोति कर्माणि, युवा कौन होता है जी? बलदेव जी आपका क्या निर्वचन कह रहा है इसमें? हाँ इनके बड़े विचित्र निर्वचन करते हैं। हाँ आज एक निर्वचन इन्होंने किया कि गिरी हुई हस्ती गृहस्थी, अगर ये निर्वचन करने लगे तो यास्क को भी सोचना पड़ेगा है ना कि ये कौन से देव आ गए हैं है ना। अच्छा युवा प्रयोति कर्माणि, महर्षि दयानंद ने किसी भी उसकी निंदा नहीं की है किसी भी वर्ण की किसी भी आश्रम की। युवा प्रयोति कर्माणि, युवा कस्मात प्रयोति कर्माणि, प्रयोति कर्माणि नाम है। हाँ कोई भी काम असंभव नहीं मानता। अच्छा ये भी कार्य ये भी कार्य, लाओ 50 कार्य दो अकेला करूंगा और फिर भी निरुक्त पढ़ के दिखाऊंगा। सारे कार्य को मिला देता है। कैसे मिला देता है? अब जो अष्टाध्याय याद करने निघंटू याद करने वाला क्या करेगा? संहिता काट रहा है तो क्या करेगा? गौ गमा जमा क्षमा क्षा, जितनी बार मारेगा उतनी बार सूत्र की आवृत्ति करेगा। क्यों जी? ऐसा नहीं होता, हाथ कट जाएगा। इसका मतलब बुद्धि नहीं है फिर हाथ कट गया? बुद्धि वहां नहीं लगी, वहां तो केवल स्मृति काम कर रही है। बुद्धि काम नहीं कर रही, ध्यान देने की बात है। स्मृति काम कर रही है, बुद्धि उस काल में काम नहीं कर रही। बुद्धि तो आपकी संहिता काटने में और याद कराने में ही है। तो वहां से कार्य अपने निकाल लेता है। और जो कमजोर व्यक्ति होता है समय का रोना रोता रहता है, समय नहीं समय नहीं समय नहीं समय नहीं। क्यों जी? चंद्रगुप्त जी तक्षति करो, ऐसे भी चलता है क्या? तक्षति करोति कर्मा, तक्षति क्या है? करोति कर्मा है अर्थात करता है। तक्षति नाम है करोति। रज आगे देखें, रज इति रजो रजते ज्योति रज उच्चते। रज का क्या अर्थ है पता नहीं था, बता रहे रजते। ये रज धातु से बना है और इसके बाद में इसके अर्थ क्या हुए? ज्योति रज उच्चते। जो ये सितारे दिखाई देते हैं ना अंतरिक्ष में, ये इनका नाम भी रज है। उदकम रज उच्चते इनका नाम भी है। लोका रजांसी उच्चते असृग गहनी रजसी उच्चते। असृग गहनी नाम है अहोरात्रे रजसी उच्चते। जी जी हाँ बिल्कुल घट जाएगा। वैसे तो प्राप्त करके ही खाया जाता है, वैसे तो कोई देता नहीं। और प्रापिता मतलब जिस उद्देश्य से खा रहे हैं उसको प्राप्त कराने वाला है तो घट जाएगा च्यवनप्राश। मंत्रों के जो समुदाय हैं उनको प्राप्त कराने वाला है, मतलब ये मंत्रों का ऋषि भी है। इन्होंने कोई विज्ञान बताया है मंत्रों का, बहुत भयंकर विज्ञान बताया हुआ है, जिसको आज सारे संसार को घर द्वार बेच के भी व्यक्ति जवान होना चाहता है ना। क्यों जी? किसी को पता लग जाए कि भाई पूरी संपत्ति दे के भी अगर मैं युवा बन रहा हूँ तो दो संपत्ति फिर कमा लेंगे, युवा थोड़ी बनेंगे, मरने वाले हैं, सारी संपत्ति तो वैसे ही चली जाएगी। तो ये एक ऐसा विषय है कि इसमें व्यक्ति सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है ना। अब धीरू भाई अंबानी थे, दो तीन चार महीने कोमा में रहे, कोई उसको चाविता प्रापिता मिल जाता तो दे देते नहीं सारी संपत्ति, और आजीवन शिष्य बन के रहते, क्योंकि फिर भी बुढ़ाना पड़ा फिर भी बढ़ा देगा, वैसे नहीं तो स्वार्थ से रहो। हैं? उनसे कुछ नहीं होना, आप करते रहो स्टेम सेल की खोज, वो हानि भी करेंगे साथ में लाभ ही लाभ करते हैं। आप तत्व को स्टेम सेल नहीं बदल सकते, उसको केवल आप तत्व जिन पदार्थों में है उनके जो सूक्ष्म रूप है वही बदल सकते हैं। लगे रहेंगे इनका धन्यवाद, खोज करते रहना चाहिए। तो ये भी दिन को रात को भी क्या कहता है? रजसी उच्चेते। रजांसी चित्रा विचरंती तायव, रजांसी अर्थात अहोरात्रे वा लोका वा ज्योतिंसी वा चित्रा नाम है चित्राणी, विचरंती विशेषण चरंती तायव नाम है स्तेना। जो चोर करने वाले हैं उन्होंने रात्रि में दिन रात अपना कार्य कर्मों में लगे हुए हैं, पीछे कहा था चोर दिन में कहाँ चोरी करता है, रात को कहाँ करता है?
दिन में तो करता है जंगलों में,
रात में घरों
में, घरों में पीछे आया था ना। तो वही कह रहे हैं ताजा वह नाम है इस्तोना, इस्तोन चोर नाम में पड़ा हुआ है। लोगों को चुराता रहता है, धन संपत्ति चुराता रहता है। और ये भी यहाँ से जो तारे हैं यहाँ से रसवस चुराते रहते हैं, ले जाते रहते हैं, प्रकाश है सारा है। सूर्य का प्रकाश चुरा लेते हैं। विचित्राणी है ताया तो चोर है उपमन हमारे यहाँ ताया है, हमारे तो मूल में तो मैं बता रहा हूँ। तम तम यवति मिश्रियति तितनिय में वो भी बन जाएगा उसमें कुछ। तो वो दोनों बन जाएंगे उसमें कोई बात नहीं है। वो अर्थ तो वही होगा, वो तन्यव का अर्थ होगा तम तम कम कम न यवती मिश्रियती, किस किस का नहीं चुराते, किसी का मिलता है थानेदार के घर से भी चुरा के ले जाते हैं, है ना। तो जिसका मिलता है उसी का चुरा लेते हैं और उनको आनंद आता है ऐसी जगह से, तो वो उनकी महत्ता की महान चोर होगा कोई। इसमें तो पता तक नहीं दिया इस मंत्र का,
दिया इसमें
कौन
है?
अच्छा अच्छा कर लो
उसका भी अर्थ कर सकते ना, कि जो जल है विचित्र जल है वो विचरण करते हैं।
भाई करने को तो वेद एक ऐसा विषय है, उसमें से कुछ भी निकाल लो, अपना सारा निमित्त जान ढूंढ लो उसमें। पर वो कहना क्या चाह रहा परमात्मा ने इस मंत्र का आविष्कार क्यों किया, बात उसकी है। उदकम में तो आपने घटा लिया, यहाँ कैसे घटाओगे सब जगह? पूरी घटना घटनी चाहिए ना वहाँ। कितना था मंत्र संख्या? 5 63 5 रथम युंजते मरुतः शुभे सुखम। मरुतः तन्नाम कहा देवता रथम युंजते, युंजते रथ को जोड़ते हैं शुभे, किस लिए जोड़ते हैं? सुखम शुभे, सुखकारी कल्याणकारी सुख की प्राप्ति के लिए। सूरो ने सूर के समान उपमार्थ में है, मित्रावरुण है गविष्ट गवि स्थिति से सु, मित्रावरुण जो है वो वीर है, और वो मित्रावरुण कहाँ है? गायों में स्थित है। गाय कहाँ है? रजान से सूर्य रश्मिया, और हाँ गायों में रहते हैं मित्रावरुण तो हमेशा। गाय का फोटो देख लो, उसके अंदर वो दोनों दे रखे हैं जो पुराणिकों ने बनाया हुआ। वो बात भी ठीक है, वो फोटो जो है ना अथर्ववेद के अनुसार बनाया हुआ है, पर वो सूंड वाले आदि दे रखे हैं ना वो ठीक नहीं है। बाकी वो फोटो जो है ना पूरा अथर्ववेद का एक सूक्ति है कि कौन सा देवता मनुष्य के शरीर में रहता है और गाय के में भी रहता है, इसलिए गाय की इतनी महत्ता है, भैंस में कोई देवता नहीं रहता। रजांसी चित्रा असुर जरूर रहते हैं, हाँ रहता है, मृत्यु रूपी देवता रहता है तो जो गाय का, हाँ भैंस में जो है ना, इसलिए उसका रंग भी वैसा ही है। भैंस पे बैठ के यमराज आते हैं, तो इन्होंने अच्छा भैंसे पे, तो भैंस और भैंसा एक ही बात है, जाति एक ही होगी, तो यम देवता रहता होगा फिर उसमें, क्योंकि उसका वेद में वर्णन नहीं, बता भी नहीं सकते कौन सा देवता रहता है। रजांसी चित्रा विचरंती तन्यवा, तो तन्यवा रजान चित्रा रजांसी चरंती, जो तन्यवा है तो तन्यवा का अर्थ तो फिर यही मानना पड़ेगा, फिर यहाँ ये इनकी दृष्टि में फिर ये उपमा ही माननी पड़ेगी। दिव सम्राजा पैसा न उक्षतम, तो दिव सम्राजा द्यूलोक के जो अच्छी प्रकार दीप्त करने वाले हैं, मित्रावरुण का ही विशेषण है सम्राजा, तो मित्रावरुणा सम्राजा दिव पैसा न उक्षतम, जैसे दूध है जैसे निचोड़ा हुआ कोई दूध है, ऐसे ये मित्रावरुण जो है लोक लोकांतरों में विचित्र रूप से पन्यव हलाने वाले हैं, फिर ये तो उसको तनोती तम तनोती ती तथ तन विस्तार से तन बन जाएगा, और तम योति मिश्रियती थी तन्यव, क्योंकि पद एक ही है, तत होता तो अलग पद मतलब स्वर अलग होता, तो यहाँ दोनों एक ही पद है, तत्यव होता ना तो दोनों के स्वर अलग अलग होते, इसका मतलब यहाँ समस्त पद है, तो ये तो तन्यव का अर्थ है उसको विस्तार को मिलाने वाले हैं, जैसे गाय के सिंचन करने वाला उसके दूध आदि को मिलाता है, ऐसी कोई कल्पना है। तो ये मित्रावरुण देवते हैं इसके, तो मित्रावरुण क्या है, सूर्य की रश्मि में भी रहते हैं, जल के बनाने वाले मुख्य देवता मित्रावरुण हैं। तो यहाँ बस रजा का अर्थ खोला है कि रजांशी के इतने यहाँ अर्थ हैं, और जल क्या है मित्रावरुण है, और वरुण जो है समुद्र में रहता है। तन्यव तन्यव जो विस्तार को करने वाले हैं वो लोक लोकांतरों में चित्र विचित्र रूप से घूमते हैं, मित्रावरुण है? तो तन्यव चरंती, तो वो दो हैं मित्रावरुण, दो हैं उनके साथ में शक्तियां भी हैं। यहाँ बहुवचन और द्विवचन को तो वेद में छोड़ ही दें कि किसके साथ में क्या घट रहा है, वो चरम मित्रावरुण है, मित्रावरुण क्योंकि दो का जोड़ा ही रहता है, और यहाँ बहुवचन इसलिए कर रहे हैं कि वो विस्तार दो का थोड़ी करते हैं, हजारों चीजों का विस्तार करते हैं, इसलिए वो विस्तार करता भी। एक व्यक्ति एक है उसके 50 गुण हैं तो उसमें बहुवचन हो ही जाता है, पर मूल शब्द तो नहीं बदलता ना, मूल तो मित्रावरुण ही, किंतु जब वो विस्तार को करने वाले होंगे तब उसका नाम तन्यव होगा, तब वो एक शक्ति नहीं है, हजारों विस्तार किए तो हजारों शक्ति हैं उसके नाम से घटते हैं। हाँ बिल्कुल घूम रहे हैं, जो इनको जान लेगा वो भी इनके साथ घूमेगा, फिर यहाँ क्यों रहेगा पृथ्वी पे। एवं हर हर हरते ज्योतिर्हर उच्चते उदकम हर उच्चते लोका हरांश उच्चनते अश्रिग अहनी हर्षि उच्चते, बार बार आएगा दिन और रात। तो हर हरते हरि हरण धातु से बना, ज्योति भी क्योंकि हरण करते रहते हैं, उदक भी हर उच्चते ये भी हरण करते रहते हैं, और लोका भी हरण करते रहते हैं सारे, तो इसलिए ह्रिय हरण धातु से बनाया है। प्रत्यग्रे हर्षा हर श्रेणी ही, अग्नि के बारे में कह रहे हैं, हे अग्ने प्रत्यग्रे, प्रत्यग्रे नाम है
अग्नि,
अग्नि है क्या, पहन देना, इसमें अग्रे दिया हुआ है। हे अग्ने प्रतिश्रेणी ही हर्षा हर है, हर्षा हर है ये बड़ी विचित्र बात है, हर्षा हर है, हर्षा हर नाम है, दिन के द्वारा ही हर है, मारो किसको हर है, असुरम और श्रेणी ही पकड़ के फिर क्या करो, पहले तो उसका हरण कर लो और फिर श्रेणी ही, श्रेणी नाम है श्री हिंसा नाशय, पहले तो उसका हरण करो मतलब किडनैपिंग कर लो और उसके बाद में उसका नाश करो, है तो ऐसे मेघ के लिए ही, पर यहाँ यातु धान है, यातु धान उसका नाम है जो एक प्रकार का विषाणु है, वायरस है, वेद में उसका सभी प्रकार के विषाणु का नाम यातु धान सम्मिलित रूप में है, बाकी उनके असुर पिशाच रक्ष ये सारे वायरस के नाम है, वेद में भूत भी वायरस का नाम है, ध्यान देना चाहिए, वहाँ वेद में खूब शब्द मिलते हैं, है? पिशाच भी है, है? पलित, पलित तो गंजे को कहते हैं, सफेद हो गए जिसके, वो बात नहीं, ये सब हैं, पर ये उस रूप में नहीं जिस रूप में माना जाता है, ये विषाणु के रूप में है, और विषाणु क्या है, विशेष्य अणु विषाणु, और विषम अणति विषेणेव अणति प्राणयति इति विषाणु, विष के द्वारा ही जो प्राण जीवित है, जिसके शरीर में विष नहीं है विषाणु मर जाएगा, ध्यान देने की बात है, विषेण अणति प्राणयति इति विषाणु, जो विष के द्वारा ही प्राण लेता है, गंदगी में ही जो खुश है, नहीं तो शुद्ध चीजों को देख के समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो शुद्ध वस्तु उसके लिए विष है। हरसा हर है, हर नाम है, हरण करो। अब किसका हरण करो? कुछ भी हो सकता है। हरती इति हर, हरती गच्छति इति हर, वो रुधिर भी हो सकता है, और उसकी हरण जो शक्ति है वो भी हो सकता है। उसको क्या करो? हरण करो, और हरसा हरसा के द्वारा करो। है हरसा मतलब अहन नाम में पढ़ो, है यहाँ कैसे करेंगे? ये पूरा सुक्त है इसलिए मैं वहां जाना नहीं चाह रहा, वो उसी बात को कहता है। पूरा सुक्त है, उसमें यातु धान शब्द ही पड़ा हुआ है। तो यातु धान का जो शक्ति है उसको हरण करके, हरसा हर है, अपनी भयंकर शक्ति से हरण करके, और पुनः श्रेणी फिर नाश है, ये इस बात को कहता है। उसमें यातु धान शब्द ही पड़ा हुआ है, वायरस, वायरस ना कह के हम यातु धान ही कहें। नहीं, ज्योति का तो है ही, तो वो ज्योति क्या है? उद्गम हरे उच्चते लोकांशी हरे उच्चते, सारी बात ठीक है, पर वो है क्या? वायरस की जो शक्ति है, पूरे सुक्त को देखेंगे तो तब होगा। तो वो ज्योति तो उसकी है ना, जिससे ऊर्जा ले रहा है, तो उसी को नष्ट करो ताकि वो मर जाए। बाकी इसमें बहुत बड़ी लंबी कथाएं हैं, या ते अग्नि हरसया रजोसया, कि जो हे अग्नि तेरा शरीर जो लोहे में है, जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है, उसको विकास करके इन सबको नाश, ये इसकी एक लंबी कथा है। इसका अर्थ वायरस नहीं करने तो फिर तो उदक हो जाएगा, कि उदक को फिर मेघ को मारो, उदक निकालो, वो अर्थ हो जाएगा। यदि लोकांशी कह रहे हैं तो लोक, लोकान लोका कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी लोक, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक। तो इनकी एक अवस्था का नाम है, इनको हरण करो। अब इनका हरण करो का क्या अर्थ है? जब निर्माण हो रहा है तो इसको वहां रखो, इसको वहां रखो, इसको वहां रखो, हरण करके ले जाओ इसको। और हरसा रहे, ये ध्यान देने की बात है कि हरसा के द्वारा ही हरण करो, या तो गति के द्वारा, या प्राप्ति के द्वारा, या दिन के द्वारा, दिन को भी कहते हैं, तो इनके द्वारा इसको हरण करो। तो मारेंगे भी जब, ये पृथ्वी को मारना भी तो एक दिन आगे आने वाला, मारने वाला भी मंत्र पृथ्वी को। तो ये कह रहे हैं कि हे अग्नि हरसा हर है श्रेणी ही, तो हर है इसके अनेक अर्थ हो गए, और उसको हरण करो, और हरसा दिन के द्वारा करो, हरसा हरण करने वाली जो शक्ति है उसके द्वारा करो, और फिर उसको श्रेणी ही मार भी दो। तो मारने की जहां बात आएगी तो पुनः वहां इन लोक लोकांतरों में रहने वाले जो वायरस है, ताच्छब्दम, उसमें रहने वाले को भी उस शब्द से कहा जाता है, रिक्शा वाले को भी रिक्शा कहा जाता है। बाकी सुक्त वायरस की बात करता है, वो विषाणु की बात करता है। जुहुरे, नहीं तो हम इसकी, और फिर यदि इसमें भी घटाना है ज्योति आदि, तो फिर ये सृष्टि के विनाश की बात होगी। जब सृष्टि का विनाश करेंगे तो इसको खींच खींच के लाएंगे, फिर हरण कैसे होगा? सूर्य पृथ्वी का हरण करेगा, और फिर श्रेणी उसको समाप्त कर देगा, सारे परमाणु वापस लौटेंगे जहां से चले थे, ये इसमें वो सारा घट जाएगा। जुहुरे वि चितयंतः, अब जुहुरे का अर्थ कर रहे हैं, इसका पता नहीं था क्या है। जुहुरे नाम है विचितयंत, तो विचेत मान होंगे, जुहेरे का क्या अर्थ किया है? हाँ, यज्ञम कुर्वंत, जुहिरे नाम है, यज्ञम कुर्वंत विचेतय माना, किंतु यज्ञ को कौन करने का अधिकारी है? विचेतय माना, अर्थात जो चेतना से युक्त है। तो चितयंत नाम है विचेतय माना, अर्थात विशेषण चिति संजाने तम कुर्वाण, अच्छी प्रकार से जान को करते है। इसका इसका अर्थ जाके सतपथ में खुलता है, यह च उ एवं वेद, यज्ञ की क्रिया का फल उसी को मिलता है, यह च उ एवं वेद। आचमन क्यों करें?
लिखा हुआ कर लिया, आचमन का फल क्या मिलेगा, सामान्य मिलेगा। जब आपको पता लगेगा कि अंतरेण अहवनियम च गारापत्यम च प्रांगतिष्ठन अप उपस्पृशति यद तद अप उपस्पृशति अमेध्यो वही पुरुष यद अनृतम वदति मेध्य वाप मेध्यो भूत्वा पवित्रम वाप पवित्र पूतो व्रतम उपायानि इति तस्माद्वा अप उपस्पृशति आचमति इत्यर्थ। जब आपको पता लगेगा तो आप आचमन को एक ऐसी क्रिया नहीं मानेंगे जिसको निमटाना है, फिर आप उसको मानेंगे कि इससे मेधा बढ़ती है इसलिए करना चाहिए। पुरुष अनृत कार्य करता है सारे दिन, तो यज्ञ भी उसका अनृत कार्य न बन जाए उसके लिए वो आचमन करता है, क्योंकि मेध्या वही आपह और मेध्या नाम है। कौन बताएगा मेध्या का शब्द का अर्थ क्या है, वैयाकरण कथम जाए थे मेधाए हितम मेध्यम इति कथम जाए थे सूत्रम उच्चताम अस्माया मेधा सृजोविनी मेधावी न तु मेध्या। यत प्रत्यय उत आ जाती तो मेधाये हितम मेध्यम। हाँ, पवित्रता बढ़ती है। इस विषय को आज समझ लें, 10-20 साल लुटपिट के समझ लें, जीवन में पवित्रता नहीं होगी तो मेधा नहीं बढ़ेगी। सुमेधा प्राप्त जिसकी मंत्र में वो नहीं होगी, कुमेधा बढ़ेगी, चालाकी बढ़ेगी और उससे विकास नहीं विनाश होगा। किसी भी पवित्रम नाम है पुनाति अनेनेति पवित्रम। करना क्या है, आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध हो ध्रुव स्मृति और स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम। तो शुद्धि कर, सत्य की शुद्धि करनी है। हमारे जीवन का लक्ष्य है सत्य, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है ही, सत्य की शुद्धि करनी है। सत्य की शुद्धि पवित्रता से होती है, अपवित्रता से नहीं होती। गप्पे मारना, इधर उधर समय को व्यर्थ करना, जो मूल्य जीवन में सिखाए जाते हैं उनको भी हंसी मुड़ाना, तो जानना चाहिए कि आसुरी शक्तियों ने मन पे कब्जा किया हुआ है और कभी भी जीवन में उन्नति नहीं हो सकती। फिर जीवन भर मरने का चक्र पैदा होने का चलता रहेगा। और आगे चलते हैं, व्यंत इति एषो अनेक कर्म, अनेक कर्म नाम अनेकार्थ। पदम देवस्य नमसा व्यंत, व्यंत नाम पश्यंत, पश्यति कर्म। देवस्य यत पदम वर्तते, नमसा नाम स्तुत्या, नमस्यति स्तौति, स्तुति के द्वारा देवताओं के पद को जान सकते हैं। ध्यान देना कि जब तक देवताओं के गुण धर्मों को नहीं जानेंगे, और देवताओं को गुण धर्मों को जानने के लिए पवित्रता पहली सीढ़ी है, तो उसको हम व्यंत नाम है पश्यंत है, तभी देवताओं का ये पद अत्यतिष्ठत दशांगुलम। और पद शब्द कहाँ है, पद यत्र विष्णु विचक्रमे त्रिधा निधदे पदम समूढ़मस्य पांसुरे। तीन पद विष्णु ने रखे थे और पूरी भूमि को नाप लिया था। विष्णु को कौन है, इसका पद क्या है, उसके पैर में धूल मिट्टी क्यों लगी हुई थी, इसकी एक विज्ञान है। ये कहाँ की घटना है ये जान ली तो ये सारा खुल जाएगा, बिना शतपथ ब्राह्मण आदि के ये जाना ही नहीं जा सकते। और आगे चलें, वी ही सूर पुरोडाशम इति खादिति कर्म, ये खादिति करने वाला है। अर्थात वी ही का वी धातु से व्यंत्य बनाया है, और वी से वी गति धातु क्या है, सन खादनेसु। तो वी ही सूर पुरोडासम, हे सूर आगच्छ पुरोडासम, वी ही नाम भक्षय, इंद्र को कह रहे हैं कि हे इंद्र वीर, जहाँ सूर शब्द है वहां इंद्री होता है प्राय, तो हे इंद्र आओ और पुरोडास को खाओ। इति खादिति कर्म, पुरोडास क्या होता है, और व्याकरण सूत्रम पुरोडासस्य कह को अर्थ तस्य कस्मिन अर्थे निपात्य थे, बिना कर्मकांड के जान के सूत्र को भी नहीं पढ़ाया जा सकता। निर्वचनम पुरोडासस्य व्याख्यानम अस्मिन् ग्रन्थे पुरोडासेन मन्यते। पुरा दास्यन्ते एनम इति पुरोडास्य। वीतम और देवताओं का भोजन है और मनुष्यों का भी होना चाहिए। पूरा नाम प्रिय पालन पूर्ण है। दास्यन्ते नाम है दासरी दाने दियंते, देवताओं की रक्षा के लिए पालन के लिए जिसको दिया जाता है उसका नाम पुरोडास है। वीतम पातम पैसे उसरी आया, आगे वीतम और अर्धे इसका वीतम पातम, वीतम नाम है भक्षितम, पातम नाम है पीतम, पयस दुग्धम कस्य उसरी आया, उसरी अकस्मात उस्राविण्य भवन्ति, कौन है वो गाय के कितने नाम है चंद्रगुप्त जी, अस्ति कश्चित, जयदेव जी ऊपर को देख लिया करो जब कुछ पूछे और नीचे झुक जाते हो ताकि पूछे ही ना है? अग्न्या उस्रा उस्रिया अहि महि अदिति इडा जगति शक्वरी इति नव गो नामानि। गाय के नाम तो रख लो, सारे दिन गाय को यहाँ देखते भी रहते हो, गाय की पूजा भी करते हो और गाय के भी नाम याद नहीं, कैसे काम चलेगा? अग्न्या उस्रा उस्रिया अहि महि अदिति इडा जगति शक्वरी इति नव गो नामानि, नौ गाय के नाम है, अदिति भी है देवा नाम माता है, ध्यान रखना शक्वरी है, शक्लिरी शक्त उत्तदस्मिन् अस्तीति शक्वरी। हाँ जी, इन्होंने खादिति कर्म है। अश्नीतम पिबतम पैसे उसरी है, गाय का दूध और घी खाओ पियो और स्वस्थ रहो। उसरिया इति गो नामा उत्सराविण्यश्याम भोगा, भगवान ने इसमें खाने पीने के पर्याप्त घी दूध दही मक्खन हवन आदि सारे इसी में रखे हुए, देखने की बात है ईश्वर ने क्या क्या रखा हुआ है। उसरिया गो नामो उत्सराविण्यो अश्याम भोगा, उत्सराविण्य नाम है ऊर्ध्वम स्रवंती गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति इति, तो ये इतने देखो दूध मिला, दूध पिया वैसे बुद्धि बढ़ी क्योंकि वो मेध्या होता है, उसके बाद उसको जमा दिया, दही खाई तो और इंद्र ने खा के बल बढ़ाया था तो और बल बढ़ा, फिर दही का क्या निकाल लिया मक्खन, मक्खन खाया तो वो हृदय होता है तो कभी हार्ट अटैक नहीं होगा वो ठीक रहेगा, फिर उस मक्खन का क्या बना लिया घी खाया, सुबह घी पान करने वाले का स्वास्थ्य वैसे ठीक रहता है, और घृतम भाई आयु, आयु बढ़ेगी, और फिर यज्ञ करेंगे तो क्या हो गया देवता खुश हो जाएंगे, और देवता क्या देंगे, हाँ मंत्र तो स्वामी जी महाराज वैसे आगे वेद में देखने ही है, पर अगर सारे मंत्र देखेंगे तो ये पाठ कैसे होगा, बात उतनी है क्योंकि हमारे पास तीन चार तीन एक महीने और बचे हैं, मेरे को तो कोई समस्या नहीं, आप निकाल लीजिए, मैं तो ईश्वर की कृपा गुरु लोगों के आशीर्वाद से मूल से बिना देखे करने में समर्थ हूँ। कितना नंबर है मेरे को बताइए, 153 4 117 पृष्ठ है, हाँ चार मिल गया, मंत्र तो बड़ा विचित्र सा है, इसमें देखें कि उत वाम विक्षु मध्यासु अंधो गावः आपश्च पीपयन्त देवी उतोनवस्य पूर्व्यः पतिर्दन वीतम पातम पय उस्रिय, अंतिम पंक्ति है तो इसका देवता कौन है, मित्रा वरुण इसके देवता हैं, और त्रिष्टुप छंद है, और दीर्घतमा औचत्य इसका ऋषि है, तो उत अपि वाम आप दोनों को अर्थात मित्र और वरुण को विक्षु, विक्षु नाम है प्रजा नाम है मनुष्येषु प्रजासु, मध्यासु विशेषण है किसका विक्षु का, मध्यासु विक्षु मध्यासु नाम है मध्यासु विक्षु या मैं मादित्रिषु विक्षु, जो आनंद देने वाली जो प्रजा है उनमें अंधा, अंधा कौन है? अन्य नाम में पड़ा हुआ है। अन्य के कितने नाम है भैया? आप लोग करते क्या हैं सारे दिन? हाँ, कोई भी तो याद नहीं कर रहे, काम कैसे चलेगा? पाठ बंद कर दें कुछ दिन, याद नहीं करोगे तो करना पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा? बिना याद के फिर देखते रहो, खसूची हो जाओगे ऐसे तो। कितने नाम है उनके? हाँ देख के बता दो, फिर देख बताना क्या है, वो तो पुस्तक से भाष दिया आपने पढ़ के। इतने तो बता दो कि 28 नाम है। पहला ही नाम अंधा है। अब यहाँ नहीं तो उल्टा अर्थ करोगे, अंधा अर्थ कर दोगे अगर निरुक्ति याद नहीं होगा तो। और मंत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? जो वीतम पीतम पैसे उसी ऐसा अंधम भवती। यही करोगे जैसे वो अग्नि मीडे पुरोहितम वाले करते हैं, है ना? तो यही कर होगा ना अर्थ, अगर वो याद नहीं होगा तो, कि जो ये खाएगा पिएगा दूध दाद वो अंधा हो जाएगा तो दूध पीना ही छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो अंधा नाम है अन्नम, गावा है अंध, गायों का जो अन्न है। आपश्च और जो जल है, पीपयंत, पीपयंत नाम है आप्यायंती वा वर्धयंती वा, देवी देवी आप गाव पीप्यंत। जो दिव्य आप है कहाँ रहते हैं? सन्नो देवी रभिष्ट आपो भवंतु, तो ये देवी आप है, यहाँ भी आ गया और वहां भी है, दोनों का संबंध क्या है? हाँ वही संबंध ढूंढते रहो, हम वैज्ञानिक संबंध की बात कर रहे हैं। देवी आप जो दिव्य आप है, गावें उनको क्या करती है? पीपयंत, ध्यान देने की बात है, जो दिव्य आप है गाय उनको बढ़ाती है, अर्थात गाय का दूध जो है शरीर में उस दिव्य आप तत्व को बढ़ाता है जो बूढ़ा नहीं होने देता, उसी का नाम दिव्य आप है। और वो यह सन्नो देवीर विष्ट है, वही दिव्य आप है संयोर अभी सवनम च और यावनम च, समनम च रोगाणाम यावनम च भयानाम, याभ्य उत्पद्यते तहा आप देवी आप। हाँ जी है? नहीं, देवी आप जो दिव्य आप है गाव ता आप वर्धयंती, गाय उन आप को बढ़ाती हैं, प्रजा के साथ में, विक्षु के साथ में। मध्यासु विक्षु अंधा पीपयंत, और प्रजाओं में अन्न को बढ़ाती है।
किरणें भी तो ले सकते
हैं ना, यहाँ गाय का वीतम पातम पयसा, ये पयसा किरणों का नहीं है, उस मंत्र को पूरे को देख के लेंगे आप। दूध है, दूध गाय का है, किरणों का नहीं है। उत अपि न अस्य पूर्व पतिर्दन, और इसका जो पूर्व नाम है पूर्व भव है, जो पालन करने में जो सबसे पहले था वो पति, पति का अर्थ है स्वामी, धन नाम है दाता, और सबसे पहले न अस्माकम अपि अस्य पूर्व पतिर धन दाता भवतु, और ये जो पहला इसका रक्षक है वो हमारा भी रक्षक हो जाए, हमें भी देव जो गाय को रक्षा करने वाला है। वीतम पातम पय उश्रियाया, वीतम भक्षितम पातम पीतम पयसे दुग्धम उश्रियाया, और जो गाय का दूध पिएगा उसके ही ये देवी आपे बढ़ेंगे, और उसके ही ये पति रक्षा करेगा, और उसका ही अन्न धान्य बढ़ेगा। अन्न धान्य कैसे बढ़ेगा? गाय गोबर देंगी, वो खेत में जाएगा, और गाय जिस खेत में जाती है, यहाँ तक भी विधान है कि यदि घर बनाना है ना, जैसे आश्रम बनाना है, तो पहले भूमि का चयन करें, भूमि के चयन निश्चित हो जाए कि ऐसी ऐसी भूमि चाहिए, एक ब्राह्मणी भूमि होती है, एक क्षत्रिया भूमि होती है, एक वैश्य भूमि होती है, और एक शूद्र भूमि होती है। तो शूद्र भूमि में कभी भी ब्राह्मण को नहीं रहना चाहिए, उसकी पहचान करके उसके बाद में निश्चय हो जाए, तो उसमें जितने प्रकार के शस्य हैं, धान्य जितने प्रकार के उस इलाके में उगते सारे बो दिए जाए। आइए, पहचान के भी तरीके हैं, वो आएगा ग्रंथों में आगे, उसके शब्द आपको शायद पता नहीं होगा, पृथ्वी से शब्द आते हैं, कभी आप कान लगा के ऐसे सुनो, पृथ्वी शब्द देती है, उससे भी पहचान होती है कि कौन सी पृथ्वी है। उसमें गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढा खोदने के बाद में उसमें पानी भरा जाता है, पानी भरने के बाद में कितनी देर में, वो एक उसका नियम है कि इतनी देर में जो पानी को पी गई तो वो अच्छी मिट्टी नहीं है, इतनी देर में उसको पीना चाहिए। मिट्टी निकालो गड्ढे की, पुनः उसमें मिट्टी डालो, अगर कुछ मिट्टी बाहर रह गई तो भी अच्छी नहीं
है।
तरीका है, उसके बाद में वो सारे धान्य बो दें उसमें हल चला के, और गाय को और बछड़ों को खुला छोड़ दें, उसको खा के एक महीने तक वो वहीं बैठे वहीं रहे, उसके बाद भूमि निवास योग होती है। इसलिए तो मेधा नहीं बढ़ रही। मेधा का ये भी है कि वहां देखते नहीं कि ये भूमि कैसी भूमि मिल गई, वही बहुत है। तो रहने के निवास भी ऐसी भूमि में बनाना चाहिए। अब वहां आसुरी भूमि होगी तो शांत कैसे रहने देगी, वो अंदर से वैसे ही शब्द पैदा होते रहेंगे।
किस तरह के शब्द?
कई प्रकार की उसमें पहचान है कि ऐसी गधे जैसी आवाज आए, कोयल जैसी आवाज आए, इस जैसी आवाज आए, उसकी 8-10 पहचान है, तो भूमि की उससे पहचान होती है। तो ये सारे शास्त्र में आगे ये जाके अथर्वेद का विषय है। ये लो
सूरज की किरणों में पयस रहता
ना,
ले क्या
जाते?
कोई भाई लाओ, आप लोग सुनते रहो, मैं पढ़ाता रहूं। विद्युत चली गई है, किसी के पास है नहीं क्या कुछ? तो ये मंत्र तो पूरा हो गया, ये आज भी पाद पूरा नहीं हो रहा, चर्चाएं ज्यादा हो जाती हैं। हाँ, तो ये गाय के दुग्ध की चर्चा होगी, और आगे इसी विषय को का क्राण क्राण एक विचारक कुर्वाणा इस अर्थ में, त्वाम इंद्र मति भी सुते सुनी थासो वशु यव गो भी क्राणा अनुशत। ये कह रहे हैं कि इन संबोधन में है इंद्र के बारे में, हे इंद्र त्वा तुम जो हो मति भी बुद्धियों के द्वारा, सुते सोम को निचोड़ने पर, सुनीथास है, सुनीथास नाम है आज जैसे रसुक सुनीथा, और सुनीत कौन होते हैं? सुष्टु नयतीति सुनीत, अच्छी बुद्धि वाले। तो ऐसे जो सुनीथास है, जो अच्छी स्तोतारा है, सुस्तोतारा है, वसुयव, वसुयव नाम है, वसून काम कामा अर्थात वसून कामयंती थी वसुयव, वसु धनों की कामना वाले, गोभी गाय के द्वारा, क्राणा क्राणा नाम है कुर्वाणा, ये जो सारी धन संपत्ति गाय के द्वारा प्राप्त करते हुए, अनुशत अनुशत नाम है अनुपश्चात, उशत नाम है स्तुवंती। तो ये इसके बाद में इसकी स्तुति करते हैं, किसकी? इंद्र की। और इंद्र क्या है? बुद्धियों के द्वारा आता है, सोम को निचोड़ा जाता है, उसके सुस्तोतारा होते हैं, इंद्र आगच्छ हरिवागच्छ मेधातिथिर्मेश, ऐसे खूब उच्चारण होता है इंद्र को बुलाने के लिए सोमयागों में। और वो वसुयव है, कौन बुलाते हैं इंद्र को? जो जिनको धन की कामना है कि हमें कुछ खा पी के देगा, ऐसी गो भी रश्मियों के द्वारा, व गाय हैं यहाँ तो ऐसे गायों के द्वारा, क्राणा कर्माणा अनुसत, और गाय के द्वारा स्तुति करते हैं, क्योंकि यज्ञ में घी चाहिए, दूध चाहिए, गाय के बिना तो हमारी स्तुति भी नहीं हो सकती आर्यों की। ये लो एक मंत्र अंधेरे में चल गया, और इंद्र ने क्या किया? तुम क्राणा अनुशत, हमारी स्तुति को, हमारे कर्मों को सुन लिया कि ये तो मान नहीं रहे, अंधेरे में भी चल रहे हैं, तो बिजली भेज देता हूँ। इंद्र कौन है? पावर हाउस वाला, वैसे इंद्र विद्युत का नाम है, विद्युत को देने वाला इंद्र है, तो पावर हाउस वाला हो गया। तो वाशी, ये तो आप देख ही लेना, सामान्यतः अंधेरे में चल गया तो उसको तो दोबारा पूछना ठीक नहीं। वाशी क्योंकि अंधेरे की महत्ता समाप्त हो जाएगी नहीं अगर दोबारा बोलना पड़ा तो, और अंधेरे की भी अपनी महत्ता है। वाशी इसका अर्थ कर रहे हैं, वाशी का आतु सिंच हरीम इम द्रो उपस्थे वाशी अभि तक्षता अश्मन मई भी। ये बड़ा विचित्र मंत्र है। आ असमंतात या हमारी आकर्षण करो हमारी ओर, तू अपि सिंचे, तो इसको क्या करो आप सेचन करो, किसको? हरिम इम द्रोण उपस्थे, हरिम कहते हैं सोम को, इम इम उदकम, उदक नाम में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, उदक के कितने नाम हैं?
एक
शतम, अस्य को अर्थ है श्राव्य, हरिम सोमम इम उदकम द्रोपस्थे, द्रोपस्थे का कहते हैं जो द्रुमय पात्र, जो काठ का जो पात्र विशेष है ना उसको द्रोपस्थे कहा है, क्योंकि सोम को निचोड़ के उसी की गोद में रखते हैं, जिसको द्रोण भी उसका वहां नाम रखा, द्रुमय होता है वो लकड़ी का होता है, किन्होंने सोम याग देखा हो तो एक उसका कपड़ा होता है मलमल का, निचोड़ते रहते हैं उसमें डालते रहते हैं वहाँ सोम रख, देखा सोम याग? हाँ हाँ, गोल गोल सा मोटा, ना ना चमड़े के पात में निचोड़ते सोम को, वो तो नीचे रखते हैं, नीचे रखते हैं उसको, कूटने वाली सिलबट्टे के नीचे रखते हैं, उपरावा के ऊपर रखते हैं, निचोड़ते नहीं। वाशी भी नाम है, स्तुति भी वा शस्त्री वा, तक्षत है उसको छीलो, सोम को तक्षत का अर्थ क्या है? तक्षण एक संस्कार है, ध्यान देने की बात है, तक्षण जो है ना एक संस्कार है, लकड़ी का संस्कार क्या है? तक्षण, ऐसे तक्षत नाम है, उसको कूट आदि के छील के संस्कुरु इत्यर्थ है, हाँ नवीनम कुरु। किनके द्वारा करें? वाशी भी अश्मन मई भी, इसका विशेषण है अश्मन मई भी, अश्मन से युक्त, पत्रों से युक्त, उसी से कूटते हैं जो सिलबट्टे आदि हैं, उनके वाशी भी, वाणी भी हैं उसमें, शास्त्र भी हैं और सिलोर बट्टे भी हैं, तो वाशी का अर्थ ये सिलोर बट्टे हो जाएंगे, अश्मन पत्थर वाले, जो वासरी शब्द है, जो कूटते समय सिल भी शब्द करता है और बट्टा भी शब्द करता है, वासरी शब्द है जी, वाणी से संस्कृत हो जाती है। अंतरेण अपि अग्नि दहन कर्मा सामग्री संज्वाल लेती, केन हेतु न मंत्र प्रयोग है, अंतरेण अपि अग्नि दहन कर्मा कपालानि संतापयति, पुनः केन हेतु न मंत्र प्रयोग है, महाभाष्य में आया ना, अंतरेण अपि मंत्रम, मंत्र के बिना भी अग्नि का काम है जलाना, बिना मंत्र के भी जलाएगी, फिर मंत्र पाठ क्यों करते हैं, सारे सुबह जाके बैठ जाएं और अपना आप इशारा करते रहो और वो आहुति देते हैं, तो मंत्र पाठ से क्या लाभ है। एवं क्रियमाणम अभ्युदयकारी, ये भाष्यकार ने उत्तर दिया। और वाणी से कैसे संस्कृत होता है, ध्वनि का हर चीज के ऊपर प्रभाव पड़ता है, पत्थर ध्वनि से तोड़ दिए जाते हैं, व्यक्ति भी मर सकता है, तो जड़ वस्तु पे प्रभाव पड़ता है, शीशे टूट जाते हैं, हाँ कोई विमान पास से गुजर जाए तो शीशे से टूट जाए, हाँ जी बिल्कुल, हमारा तो कोई भी काम बिना क्रिया स्मारक मंत्र, मीमांसकों का न्याय है, मंत्र जो है क्रिया को स्मरण कराने वाले, पहले मंत्र बोलेंगे तब क्रिया करेंगे, इसलिए स्वाहा के बाद ही आहुति देनी चाहिए, क्योंकि स्वाहा पूरा हुआ भी नहीं, आहुति देना प्रारंभ कर देते तो क्रिया मंत्र पूरा नहीं हुआ, तो स्वाहा उसके बाद आज चलना चाहिए, है अच्छा कर देता है, आगे बता, अच्छा अब तो ये है ही, ध्वनि तरंगे बहुत भारी प्रबल हैं, तो जड़ वस्तुओं पे सब पे इनका प्रभाव होता है, इसलिए वाणी से तो प्रभाव होता ही है, तो पत्थर वाले जो वाशी हैं, अश्मनवयी जो सिलबट्टे आदि हैं, उनसे आप इसको द्रोण उपस्थ में कूट उट के डालो, ताकि वहीं से, और ये द्रोण उपस्थ क्या है, जहाँ सोम रहता है, ध्यान देने की बात है, ये कि नित्य पदार्थ भी है, केवल ये सोम याग का कुट्टन नहीं चल रहा है, वहाँ नित्य अंतरिक्ष में भी घटना घट रही है। आसिंचन हरिम द्रो उपस्थे, हरिम सोमम द्रो उपस्थे नामे तन्नाम के पात्रे, आसिंच द्रुम्यस्य हरि सोमो हरितवर्ण, ये हरितवर्ण का ही होता है, अयम अपित्रो हरि तस्मादेव, ये तस्मादेव हरि वर्तते, कौन है ये हरि? बंदर तो हरा नहीं होता, हरे बंदर होते क्या? तोता होता है और पर्वत भी होता है, हरि का अर्थ है पर्वत साहित्य में, हरि का अर्थ है कपि यानी बंदर, हरि का अर्थ है
सिंह
और हरि का अर्थ तोता भी है, हर तोता ही इससे घटेगा क्योंकि वो हरा हरा होता है,
सोम भी तो हरा
है, वही तो ना ये तस्मात, इसीलिए तो तोता भी हरा है क्योंकि सोम हरा है, ये ऐसा कह रहे। वाश भी तक्षता अस्मनमयी भी, वाश भी अस्मनमयी भी रीति वा वाग भी थी, वाणी से करो या तो, और नहीं तो सिलबट्टा हो ही गया, दोनों से मिलके करो। वाघ भी लिखा हुआ है ना वाणी, जब पत्थर और शिल कूटते हैं तो वाणी निकलती नहीं निकलती, और वाणी हमारे जो मंत्र हैं वो वाणी होगी, वेद वाणी। पत्थर क्या है, अस्मा भवतु तेतनु नस्तनु है, तो हमारा शरीर पत्थर हो जाए मतलब हम जड़ हो जाए, कहीं हिलचिल ना पाए, ऐसा थोड़ी अर्थ है उसका। ये तो श्राप हो जाएगा, आशीर्वाद नहीं होगा, कि जैसे उसका हो गया था अहिल्ला क्या ऐसे ही तुम्हारा भी हो जाए। इसका मतलब जो पत्थर के अंदर एक गुणवत्ता है कि वो लंबे काल तक अपने अवयव को टूटने नहीं देता, उसके समान हम अपने विषयों में शरीर से दृढ़ हो जाए, नहीं तो पत्थर हो जाएंगे तो बुद्धि जड़ हो जाएगी, तो ये इसका अर्थ है। तो पत्थर से ही कूटते हैं क्योंकि जो जहां से सोम झरता है वहां वही घटना हो रही है, इसलिए ये तो केवल आप जब तक इस भाषा को नहीं समझेंगे वेद को समझना संभव नहीं है। और जिन्होंने शतपथ ब्राह्मण नहीं पढ़ा है, अच्छा चिंतन नहीं किया और ब्राह्मणों के मीमांसा आदि के साथ में, वो वेद मेरी दृष्टि में तो ना पढ़ सकते हैं ना पढ़ा सकते। क्यों? व्याकरण से आपको पता लगा कितना मिलता है, अग्नि मीड़े का कोई अर्थ व्याकरण से सामान्य अर्थ खुलेगा, अग्नि क्या है ये तो पता नहीं लगा, अंगेर ने लोपश्चय के इससे निरुक्त से भी सामान्य नहीं पता लगा, जैसे ही ब्राह्मण में पहुंचेंगे, और वो ब्राह्मण में भी सारी घटना, इसलिए सोम याग का भी देखने जाओ तो पूरा क्रम से क्या चल रहा है, शतपथ ब्राह्मण लेके बैठो तब जाके सारी चीजें खुलनी, नहीं तो वेद का कोई विज्ञान खुलता नहीं है। आप देख भी रहे होंगे सारी नित्य घटनाएं, और वो नित्य घटनाएं वहां क्रियाओं में दिखाई हुई है। और आगे चलें, विषुण, विषुण को अर्थ विचित्र है, मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा है या विष से जो युक्त है उसका नाम विषुण है, मच्छर उच्छर हो जाएंगे। स सर्धत अरियो विषुणस्य जंतोर मा शिशंदेवा अपि गु, अलग अलग हैं दोनों, किसी में इकट्ठा लिखा तो अपि गु एक है, और ऋतम न, ऋतम नाम है किस नाम में पड़ा हुआ है, ऋतम यज्ञ नाम में पड़ा हुआ, यज्ञ के कितने नाम है, हो क्या रहा है भाई, मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ किसी का असर ही नहीं हो रहा कि भाई ये याद करो याद करो याद करो। जयदेव जी अब छूट नहीं है, आपने पहले भी याद किया, अब उसकी आवृत्ति करो, देवत कांड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा अगर ये याद नहीं हुआ तो, मेहनत की जाए पूरी। याद करने से स्मृति बढ़ती है कम होती है, तो फिर क्यों नहीं याद करते, जब उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो जंग लग जाएगी, वर्षों से प्रयोग नहीं किया इसलिए जंग लगा हुआ है, मेरी काम ठीक से क्यों कर रही है, मैं मुझे रटने की अपेक्षा नहीं, फिर भी मैं कोई श्लोक कोई मंत्र कोई, मेरा नियम है कि मैं सबसे पहले संध्या के बाद यही काम करता हूँ कि मैं कोई चीज को रटता हूँ, इसलिए कम नहीं हो रही बढ़ रही है। कुछ भी मंत्र रट लिया, कोई कोई श्लोक रट लिया, कोई पंक्ति रट ली, हाँ तो इसलिए, क्योंकि उसका उसको उसकी ऊर्जा क्या है, स्मृति की ऊर्जा क्या है, स्मृति का अधिष्ठात्री देवता क्या है, वही है कि उसको रोज काम दिया जाए, यहाँ जंग पड़े पड़ी हुआ है फावड़ा काम ही, तो जंग लग जाएगा ऐसी स्मृति में, जंग लग जाएगा आप प्रयोग ही नहीं करेंगे, समय नहीं है समय नहीं है समय नहीं, ये रोना बेकार का है, आप निकालो तो सही, समय ही समय है। आप ये देखें करके एक श्लोक लिख लें, एक चीज लिख लें और उसको जेब में रख लें, आपको कोई रोक रहा खेलते समय, जैसे दूसरा हाथ मार रहा है एक अपना निकाल के देख ले, भूल गए तो उसको मन में चलाते रहे, और मंत्र पाठ करके ही बोली बोल में हाथ मारे, देखो कैसे याद नहीं होता,
मंत्री हो जाएगा, बोली बोल तो नीचे
होगा। अब आप लोग पहले ही निराश हो तो आपका तो भगवान भी मालिक नहीं, क्योंकि उसके लिए तो फिर यातुधान ही है, आपको वही ठीक करेंगे, क्रिया की नहीं प्रयोग किया नहीं, और उससे पहले ऐसा हो जाएगा तो फिर तो आपको तो मरना ही है, आपको कोई नहीं बचा सकता, प्रयोग करके नहीं देखा, विचार नहीं किया, मैंने सारा किया हुआ मैं तब आपको बता रहा हूँ ऐसा हो जाएगा, कैसे कर लेंगे, सुबह अश्विनी को देख रहेंगे वहां भी नींद आ जाएगी, पहले ही आपने कह दे तो नींद आएगी आपको, तो फिर आपका भगवान भी नहीं बचा सकता, ये ध्यान रखना आप, यही होगा क्योंकि निराशी व्यक्ति और आसपास के वातावरण में भी निराशा पैदा कर देता है।
वेद पढ़ के
तो आप बोला मत करो, दूसरों के मन में यहाँ वायरस मत फैलाओ निराशा के, ठीक है? ऐसी बात दोबारा नहीं बोलनी है। ये जरूर कह दे तो मैं तो कमजोर हूँ, कायर हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं दुर्बल हूँ, भगवान मेरे को बल दे, ऐसी प्रार्थना जरूर कर लिया करो, है ना? पर दूसरों के ऊपर ये बात मत घटा, क्योंकि चंद्रभु जी आपके ऊपर तो बात नहीं घटती ना। मैंने गलत व्यक्ति से पूछ लिया, उसने भी समर्थन कर दिया। जय देव जी।
सोच रहे कहूं क्या।
तो निराश व्यक्तियों का समुदाय इकट्ठा हो गया शायद। स्वामी जी तो पार है इन सब चीजों से, उनको तो नहीं होती है सारी चीजें।
पड़ोसी में माता जी बाहर सोती
है। अच्छा चलो आगे चले। तो स सरधत स आगच्छेत, यह विषुणस्य, विषुणस्य नाम है, यद विषाणु वर्तते अन्य किमपि विषम वर्तते अन्य च जो यज्ञस्य हंता कोपि दुष्ट विषाणु वर्तते मनुष्यो वा। देखो कुटिल भी हो सकता है, और यज्ञ के विनाश के लिए तो जो विषाणु है ना, जिनसे यज्ञ को, यज्ञ से जिनको खतरा है, अधिकतर वो बातें वेद में होती हैं। ये जो हम लोक में अर्थ करते हैं तो आधि भौतिक है, आधि विज्ञानिक अर्थ ये नहीं होता है। यहाँ तो एक घटना को बता रहे हैं, यज्ञ की एक घटना को बता रहे हैं कि यज्ञ की घटना में रोकने के लिए यज्ञ से किसको बाधा है वो उसको मारेगा, यज्ञ से विषाणु को बाधा है क्योंकि वो उसको हंता है, सीधी बात है। इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए जो वैसा जिससे बाधा है वो मनुष्य भी हो जाएगा, पर वो द्वितीय अर्थ है, प्रथम अर्थ नहीं। माँ शिशम देवा अपि गुह, और ये दुष्टा जना अथवा विषाणव अस्माकम यज्ञ न गच्छेयु, न अस्माकम ऋतम यज्ञम अपिगु अपि न आगच्छेयु, ऐसे दुष्ट व्यक्ति हमारे और दुष्ट विषाणु हमारे यज्ञ में न आएंगे तो पिटेंगे। आगे चलो। अपिगु ऋतम न सत्यम वा यज्ञम वा, तो सत्य में जहां सत्य है वहां दुष्टता नहीं ठहरती, ये पक्की बात है। जहां सत्य है वहां अधर्म नहीं ठहरता, अधर्म सत्य का चोला ओढ़ के तो कुछ दिन ठहर सकता है, एक दिन मारा जाता है। पंचतंत्र की कथा सुनी होगी ना, वो गिर गया था उसमें गीदड़, और वो कोई देव प्राणी बन गया, गीदड़ जो है वो पेंट वेंट में गिर गया और देव प्राणी बन गया, ऐसा जंतु कोई था ही नहीं वन में, सब लोग हाथ जोड़ने लगे, कोई महान भगवान ने भेजा हुआ, उसको राजा घोषित कर लिया। अब बेचारा कब तक अपने आप को छुकाएगा, आखिरकार प्रकृति का भी तो नियम है, पोल तो खोलती है वो। तो एक दिन साय का समय था, सभा चल रही थी, शेर वेर भी बैठे उससे आशीर्वाद ले रहे थे, शेर को भी आशीर्वाद दे रहा था, उपदेश कर रहा था, और उधर से भाई चिल्लाने लगे गीदड़, अब कब तक रोके अपने आप को जब भाई चिल्ला रहे हैं। तो गीदड़ों की आवाज सुन के भले ही भेष में गीदड़ों विचित्र प्राणी बना हुआ हो, तो आवाज निकल गई, शेर ने खा लिया। तो ऐसे ही होता है कि वृत्ति हमें एक दिन समाप्त कर देती। स वही है, वह जो इंद्र है, सरधत है, जो दुष्टों को मारने वाला है, वो हमारे यज्ञ में आ जाए और ये दुष्ट हमारे यज्ञ में ना आए। भाई यज्ञ में एक को तो बुलाया है और एक का निषेध किया है, जिसको बुलाया उसका नाम इंद्र है और जिसको मार रहे हैं वो दूसरी जंतुएं हैं। ये पूरे मंत्र में इसका देवता सविष्ठ इंद्र है। अपि गु ऋतम न सत्यम व यज्ञम व अपि गु नाम आगच्छेत, कह इंद्र है और एते न आगच्छेयु। सत्यम कस्मात्? तो यज्ञम व जामी अस्य को अर्थ है भगिनी इत्यर्थ, आघाता आगच आघाता आघाता नाम आगमिष्यन्ति, आगच्छान उत्तरायुगानी आएंगे, आने वाले दिन यत्र जामय, जो भगिनी है किण्वन अजामी, वो ऐसे कार्य करेंगी जो उसको नहीं करने चाहिए। उप बरब्रीहि उद्घाटय वृषभाय सेचनशीलाय बाहुम स्वकीयम अन्यमिच्छस्व कल्पनाम कुरु हे शुभगे पति मत। मुझे छोड़ के अन्य किसी की पति की कामना करें, ऐसा जामी के बारे में कहा गया है। इसका अर्थ कुछ लोग कहते हैं कि ये भाई और बहन के विषय में है, कि भाई और बहन, भाई जो बहन भाई को अपना पति स्वीकार करने के लिए कह रही है, भाई मना कर रहा है कि ये शास्त्रीय दृष्टि से ठीक नहीं है। अर्थात ये बताना चाह रहे हैं आदि सृष्टि में कैसे पता लगा कि भाई और बहन का विवाह नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, संस्कार हमें कहाँ से आया, ये संस्कार कैसे पता लगा, कि क्योंकि दूसरे संप्रदाय में तो हो रहा है, दूसरे में तो हो रहा है ना। तो वेद ये बता रहा है कि भाई और बहन का विवाह नहीं होना चाहिए, और उसी को ऋषियों ने और विकास किया कि गोत्र आदि का जो, एक तो इसका ये सामाजिक विज्ञान है, पूरा अर्थ कर लेते हैं फिर इसका एक विशिष्ट विज्ञान जान करेंगे। आगमिष्यन्ति तानि उत्तराणि युगानि, अभी बाद में ऐसा समय आएगा यत्र जामय करिष्यन्ति अजामि कर्माणि, तब ये काम होगा। आज ऐसा कार्य हो भी रहा है ना, है ना, हाँ। हाँ तो जब वो काल अच्छा आएगा तो उसके बाद में जो आएगा उसको मानेंगे, क्योंकि ये तो नित्य है ना जी, वेद तो नित्य है। तो जिस काल में वो अवस्था नहीं है तो तब ये घटेगा कि भाई अभी ऐसी अवस्था नहीं है, पर ऐसा हो, क्योंकि ऐसा हो रहा है अभी, वेद तो नित्य है ना, सभी प्रकार का इसमें ज्ञान है, तो ऐसा अब तो ऐसा हो रहा है। वहाँ विदेश में चले जाइए, वहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं, मुसलमानों में ऐसा हो रहा है, भारत में भी कई जगह तो ऐसा हुआ है। ये नित्य है, ये मनुष्य की अपनी मूर्खता है, मतलब ये ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं है, निषेध कर रहे हैं तो कि नहीं करना है। वेद को हर प्रकार का जान देना, तो ये भी तो जान देना कि विवाह आपस में किसका होगा और किसका नहीं होगा। नित्य घटना के रूप में तो मैं बताऊंगा ना इसका विज्ञान क्या है, अभी तो पहले इनकी व्याख्या सुन लें। जाम्यति एक नाम है, जाम्यति जो अकेली का नाम है, एक का नाम है, बालिशस्यवा या मूर्ख का है, तो ये मूर्खी है जो ऐसा कह रही है। असमान जातीयस्य वा उपजन है, और असमान जाति है मतलब ये समान जाति नहीं, स्त्री अलग जाति है और पुरुष अलग जाति है, उपजन है नाम है, आगम है। उपधेही वृषभाय बाहुम अन्यम इच्छस्व, और अन्य पति को चाहो सुभगे मत, पति मत इति व्याख्या, तब मेरे से अन्य पति की आप कल्पना करो, ये इन्होंने बताया। अब इसका वैज्ञानिक अर्थ हम देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण के बिना ये मंत्र वस्तुतः खुलता नहीं, ये मंत्र क्या कोई भी मंत्र नहीं खुलता है, अगर उसको विज्ञान का अर्थ खोलना है तो निरुक्त से भी नहीं खुलेगा। क्यों, इस घटना का नित्य अर्थ क्या है, मतलब ये घटना कब की है, कहाँ हो रही है, क्या चर्चा हो रही है, बिना शतपथ ब्राह्मण के अर्थात इस मंत्र का किस क्रिया में विनियोग किया गया है, ये प्रातःकाल की घटना है, सायंकाल की घटना है, या अंतिम काल की घटना है यानी सृष्टि के अंत की घटना है, मध्य की घटना है या प्रारंभ की घटना है, कब की घटना है, तो वही बता रहे हैं आगे। ये इन्होंने तो बता दिया, अब व्यास जी ने तो ये बात खोली नहीं, अब हम शतपथ ब्राह्मण के अनुसार खोल देते, लिख लीजिए इसको। एषो वै यमः, यमो यैष सूर्य तप्ति, यम कौन है, इसमें दो शब्द आए यम और यमी, तो यम और यमी कौन है, इनको बिना जाने इस मंत्र का अर्थ नहीं जाना जा सकता। एषो वै यमो यैष सूर्य तप्ति, जो सूर्य तपता है इसका नाम यम है, इसलिए हमारे ऊपर बहुत लोगों ने सूक्तों को लेकर आक्षेप किए हैं कि वेद में भाई और बहन के संबंध की बात है, ऐसे लोग आक्षेप करते हैं जो इसके विज्ञान को नहीं जानते, और बिना शतपथ ब्राह्मण पढ़े इस आक्षेप का निराकरण हो ही नहीं सकता। और आगे चलें, यम पृथ्वी यमी, ये जो पृथ्वी है इसका नाम यमी है, अब मंत्र का अर्थ खुल गया, देखो शतपथ ब्राह्मण ने क्या विज्ञान खोल दिया। नमस्ते, आचार्य जी को प्रश्न संख्या बता दें। तो अब ये यम कौन है, सूर्य, यमी कौन है, पृथ्वी। अब ये घटना कहाँ की है, जब पृथ्वी और सूर्य दोनों कहाँ पैदा हो गए? हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक, ये दोनों उसी में बने थे। अब ये जब दोनों एक साथ विस्फोट हुआ और निकले, तो पृथ्वी सूर्य को मैं क्योंकि ताकत ज्यादा थी उसकी ओर खींचना चाह रही है, उससे लिपटना चाह रही है, उसकी बाहु को पकड़ना चाह रही है, उसके जो बाजुए हैं उसके हिस्से से मिलना चाह रही है। तब ये घटना है, सूर्य कह रहा है यानी तद अभिधावी देवता उसको कहा जा रहा है ऋषि के माध्यम से कि अभी आपका हमारा मिलने का समय नहीं आया है। वो भी युग आएगा जब हम दोनों पुनः एक साथ रहेंगे, क्योंकि हम एक साथ रहे हैं इसलिए भाई बहन हैं, हिरण्यगर्भ इनका पिता था, दोनों उसी में पले हैं, तो इसलिए कौन होगे, भगिनी भी होगी। और क्योंकि उस काल में अगर फिर मिल जाते तो ईश्वर की सृष्टि का निर्माण ही बेकार हो जाता, इसलिए कहा जा रहा है कि वो दिन जरूर आएंगे जब हम मिलेंगे। कब आएंगे? जब हम टूटेंगे, और जब पहले जब टूटेगा शतपथ के अनुसार पृथ्वी सूर्य में जाकर चिपक जाएगी। ये इसका विज्ञान है, जो बिना ब्राह्मण जिन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ नहीं पढ़ा वो निरुक्त पढ़ाएंगे, उनको ये कोई भी घटना समझ में ये पक्की बात है, इसमें कोई असत्य नहीं है। आध्यात्मिक में तो रोज ही होता है जी, रोज घटना घट रही है मन में, वृत्तियां जो हैं है ना, हमें लूटना चाहती हैं, जैसे ही हमें होश आता है तो हम उनसे बचना चाहते हैं, ये तो रोज की घटना है। अध्यात्म में भविष्य लागुनी, अध्यात्म का अर्थ है वर्तमान यानी शरीर में होने वाली घटना, यही है अध्यात्म का भविष्य से संबंध नहीं, भविष्य तो भविष्य है, उसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं। ये आधिदैविक घटनाएं यानी वैज्ञानिक जो घटनाएं हैं ये उसी स्थिति को बता रहा है कि सूर्य और पृथ्वी एक दिन दोनों मिल जाएंगे, अभी वो नहीं मिलेंगे जब तक उनका समय है। उसी को सामाजिक नियम में बता दिया है, क्योंकि एक दिन तो सबको समाप्त हो ही जाना है, तो उसके बाद में आत्मा आत्मा बचेंगी, शरीर बचेगा ना, कोई भगनी बचेगी ना, भाई बचेगा, तो वहाँ भी ये घट रहा है, वो दिन भी आएंगे जब हम पैर पल्ले में बैठे रहेंगे साथ में और अपना शांत, अभी नहीं आए, क्योंकि अभी तो हमें अपने डांडे ढोने हैं, कष्ट पाने हैं, मोक्ष में जाना है, नहीं जाना तो सामान्य जीवन जर के निराश होकर मरना है, फिर आगे निराश होकर पैदा होना है ना, तो ये सारे काम होंगे और आगे चलें। तो इसका वैज्ञानिक अर्थ आपको समझ में आ ही गया है, बिना शतपथ ब्राह्मण के ये नहीं आता है, और शतपथ ब्राह्मण का भी अर्थ ये है कि पढ़ लिया और नहीं जाना क्रिया को तो भी नहीं आता है, उसके लिए एक पवित्र मेधा चाहिए। पर वेद का कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जिसको अच्छी प्रकार से वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को, कोई भी हमारे सामने अपना कितना भी बड़ा वो पार्टिकल फिजिक्स वाला वैज्ञानिक आग ला कर बैठा हो, जो बैठे हुए हैं वो हजारों 10,000 वैज्ञानिक लगे हुए हैं, हम उनको आधा घंटे में उनके दिमाग में बात बैठा देंगे कि मूल परमाणु ये है ऋग्वेद को लेकर शतपथ ब्राह्मण को लेकर, और नहीं समझ में आ जाते बता देंगे, आप इसको खोजते रहो। क्यों? इसमें पवित्रता भी एक कारण है, उससे मेधा आती है, वो संबंध को जोड़ती है, और पवित्रता जीवन में पवित्रता से आती है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो ये विज्ञान हमें इसका पता लगा, और आज कोई आपके सामने इस बात को कहेगा तो आप अर्थ देने में भी समर्थ हो गए कि भाई ये क्या घटना है। द्योर में पिता जनिता नाभि, पिता शब्द को खोल रहे हैं कि पिता क्या है, द्योर में पिता, द्युलोक तो मेरा पिता है और वो जनिता भी है, पिता के कितने अर्थ हैं, जनिता पिता और रक्षिता, रक्षा करने वाला, जनिता मतलब जिसने वीर्य दान देके उत्पन्न किया है और जिसने पालन किया है, नाभि अत्र बंधु, और नाभि कौन है, पृथ्वी मेरी कौन है, बंधु है, पृथ्वी माता पृथ्वी मैयम, इसी को खोला है कि पृथ्वी मेरी माता है, अर्थात पृथ्वी मेरी माता है और नाभि के रूप में है, वो नाभि के रूप में, जैसे नाभि से मिला हुआ गर्भ पैदा होता है, तो पृथ्वी मेरी नाभि के रूप में और वो माता भी है। माता कौन है, माता अंतरिक्ष को भी कहते हैं, और पृथ्वी को अंतरिक्ष नाम में पड़ा हुआ है, ध्यान रखना इस बात को, बीज जो है ना वो अंतरिक्ष से आया था, मही यम पृथ्वी, उत्तानयो चम वो, और जो जो भाग हैं बीच के वो ऊर्ध्वतानयो और अर्धतानयो, जो द्यावा पृथ्वी के जो बीच में है, जैसे हमारे दोनों जांघें होती हैं उस प्रकार से बता रहे हैं, योनि तो वो इसके बीच में हमारी योनि थी जहाँ से है बीज उत्पन्न हुआ है, और उस बीज को सूर्य रश्मियों के माध्यम से पृथ्वी में पहुँचाया गया, ध्यान रखना। आज जैसे वैज्ञानिक भी कर लेता ना, किसी का गर्भ किसी के उसमें स्थापित कर देता है, ये उसी बात को कह रहे हैं। योनि अंतरत्र पिता दुहितुर गर्भ में था। तो ये जो बीच का जो भाग था द्यावा पृथ्वी के बीच का, ये योनि था, बीज की उत्पत्ति का स्थान था, दोनों के अंतरा बीच में अंतरिक्ष में। पिता दुहितुर गर्भ में अधात, पिता ने दुहिता को गर्भ धारण कराया। इस मंत्र पे बहुत आक्षेप करते हैं, बहुत लोग ध्यान देने की बात है। इसमें ये सिद्ध करते हैं कि पिता दुहितु, पिता ने कन्या को गर्भाधान कराया, पर अगर इसका वैज्ञानिक अर्थ आप नहीं जानेंगे तो इसका अर्थ ये निकलता है। घटना कहाँ की है ये बिना शतपथ ब्राह्मण के समझ में नहीं आ सकती, नहीं तो अर्थ ये निकल रहा है इसका। पहले इनकार देख लेते, वैज्ञानिक अर्थ बाद में करेंगे। पातेर त्रिन त्रिच सूत्र बना लेंगे, जहाँ मिलता है लोक में मिलता होगा उनको। तो ये जरूरी थोड़ी कि वेद में लोक में कहाँ प्रयोग होता है, लोक में कहीं अंतोदात होती है कोई चीज, वेद में क्या है जुष्टार्पित आदि उदात होते हैं, लोक में अंतोदात होते हैं। तो पातेर त्रिन ये लोक के लिए हो गया, और वेद में तो दृष्टानुविधेय छंद सी भवंती, वेद में अंतोदात देखा जा रहा है तो त्रिची मानना पड़ेगा, तो वेद का तो ये समाधान जी। नहीं, इसमें ताछिल्य की कोई बात ही नहीं है। पिता का तो अर्थ रक्षा करने वाला है, रक्षा कर, जब रक्षा करने वाला है तो उसका तो स्वभाव ही, पिता का तो स्वभाव ही रक्षा करने वाला, तो आ नहीं रहा वो तो स्वाभाविक है। रक्षा करना तो पिता का कर्तव्य है, वो तो स्वाभाविक कर्तव्य अपने आप ही है, उसको बुलाया नहीं जा रहा, और ऐसे करने में भी कोई समस्या नहीं। किंतु दृष्टा क्या है, दृष्टानुविधेयश्च छंसी, भाष्यकार को इसको ध्यान रखना चाहिए कि वेद में जैसा देखा गया यदि अंतोदात देखा गया तो त्रिश्य हो रहा तो वही माना जाएगा, और लोक में तो क्योंकि अब स्वर समाप्त हो गया तो इसलिए हम कह नहीं सकते। तो ये सूत्र लोक के लिए हो सकता है, और वेद के लिए है ही दृष्टानुविधि, और नहीं तो कल्पना हो रही है तो ऐसा भी कर सकते हैं त्रिन त्रिश्य, अगर दोनों स्वर देखे हैं तो पातेर त्रिन त्रिश्य, उनादि में ऐसे बहुत किया हुआ है। द्योर में पिता माता वा पालिता वा जनिता, तो तीन अर्थ कर दिए, द्योर में पिता है, माता वा या माता है, पालिता वा जनिता वा रक्षा करने वाला या उत्पन्न करने वाला। नाभि यत्र बंधुर में माता, नाभि क्या है बंधु के समान है, नाभि कौन होता है जहाँ बंधा होता है, और बंधनाति इति बंधु, ये सारे हमें बांध के रखते हैं, इधर उधर नहीं भगने देते बंधु लोग, कोई घर बार छोड़ना भी जाए तो उसको पकड़ लेते हैं बंधु लोग, पर जो बुद्धिमान बलवान होते हैं वो बंधुओं को छोड़ के भग जाते हैं। माता पृथ्वी मही महती यम बंधु, माता जो पृथ्वी है ये बहुत अधिक बंधु है, इसने बांधा हुआ है हमें। संबंधना, इसका बंधन जो है ना एक ही रूप में है, पृथ्वी जो पृथ्वी है, अंतरिक्ष भी है, ये भी अंतरिक्ष में तो बीज पैदा होता है जहाँ वो योनि है, और वहां से फिर यहाँ स्थापना किया जाता है, दोनों है। हाँ, माता का अर्थ अंतरिक्ष है, पृथ्वी का अर्थ पृथ्वी है। माता अंतरिक्षम निर्मियंते अस्मिन् भूतानि, ऐसा निर्वचन है इन्होंने दिया हुआ शायद पीछे आया था। और सन्नहना, ना भी क्या है, सन्नहना है बंधन करने वाले, ना अभ्यासाद वा ना अभ्यासन नद्धा, अभी असन्नद्धा है, हाँ नाभ्यास सन्नध्या गर्भा जयंते, नाभि से बंध के ही गर्भ निकलते हैं। इति आओ तस्मादेव जातीन सनाभ्य इति आचक्षते, भाई बंधुओं को क्या कहते हैं, सनाभि कहते हैं। संबंधवा इति च जाति संजानात, क्योंकि जानते हैं कि अपने हैं। उत्ताने चमो योनि अंत, तो दोनों के बीच में योनि है, उत्पत्ति स्थान है योनि का अर्थ। उत्तान है, उत्तान है ऊपर को उठे हुए, ऊर्धतान हुआ या और लटके उससे हुए हैं। तत्र पिता दुहितु गर्भम ददाति परजन्य पृथ्व्या, पिता वहां दुहितु को गर्भ धारण कराता है, परजन्य किसको कराता है पृथ्वी को, क्योंकि अब ध्यान देना चाहिए अर्थ पे, पालयिता, पालिता पिता है, और दुहिता कौन होगी जिसका पालन कर रहा है, पिता कन्या का पालन करते हो कौन हो गया पृथ्वी, परजन्य पालन कर रहा है। और सूर्य नह पिता पृथ्वी माता, सूर्य से ही शुक्र आया था, पृथ्वी ने गर्भ में धारण किया था, इसलिए वो गर्भम अधात, क्योंकि इसका पालन करने वाला, ये ध्यान देने की बात है। तो इसका वैज्ञानिक अर्थ ये है कि परजन्य जो मेघ है वो पिता है, पृथ्वी पे वर्षा होती है तो वो चलता है, और दूसरा सूर्य पिता है, और पृथ्वी माता है, क्योंकि शुक्र सूर्य से आया था, पृथ्वी ने उसको धारण किया था। और दुहिता दुहिता दूरेते, सब वैज्ञानिक करते हैं, कन्या की बात नहीं चली, कि वो पृथ्वी सूर्य से दूर में ही हितकारी है, इसलिए उसकी दुहिता भी है, क्योंकि वो उसको धूती भी रहती है, सूर्य की रश्मि आती है, तभी तो इसमें ऊर्जा बनी हुई। संयु सुखयु, संयु क्या है, सुखयु है, सुख को देने वाला है, अथा न संयु, यास्काचार्य ने तो आपको हमें सबको सिखा दिया है, मंत्र में आता है द्योर न पिता पृथ्वी माता, इसका क्या अर्थ करेंगे, द्यो हमारा पिता यानी सूर्य, द्युलोक सूर्य के लोक है, वो हमारी माता है, तो उन्होंने तो एक बार यहाँ सिखा दिया, अब आप घटाते रहो, एक मंत्र को घटाना था जहाँ ये चीज आई हो, अब वो तो वेद तो पढ़ेंगे ही तो वहाँ घटेगा। बाकी ये भी मंत्र है कि सूर्य से शुक्र आया है, ये मंत्र है, मैं अपनी कथा नहीं सुना रहा, कि सूर्य से शुक्र आया है, पृथ्वी ने उसको अपने गर्भ में धारण किया है और उसका विकास किया, एक दिन आने में जैसे अंडा फटता है ऐसे हम जवान स्त्री पुरुष निकले हैं, सूर्य से आया, अंतरिक्ष तो योनि है, आया तो कहीं और से है, अंतरिक्ष तो यहाँ योनि लिखा हुआ है, वो उसने तो धारण किया उसको। इसलिए एक यहूदियों में एक ऐसा समुदाय है जो जीवों की उत्पत्ति अंतरिक्ष में मानता है, नेट पे भी काफ़ी जानकारी उसके बारे में है, वो कहते हैं कि अंतरिक्ष हमारा पिता है और वो हमारी उत्पत्ति वहीं हुई थी, कोई कहीं प्राचीन साहित्य में उनको मिला होगा, तो उसके बाद में वो यहाँ पृथ्वी ने धारण किया। ये पूरा विज्ञान है। संयु सुखयु अथा न संयो अपोह रपो दधात, और जो ये संयो है न अस्माकम कृते, ये क्या देगा, रप और रिप्र दो हैं वैसे तो, यहाँ ये एक ही क्यों दिया है, आपके में दो दिया है क्या, नहीं अरप होना चाहिए, क्योंकि रप तो पाप को कहते हैं, अरप है नाम है पाप से रहती है, कहते हैं हाँ, तो वो अरप होना, रप तो है ना पाप नाम नहीं होता है, तो ये अप आप जो संयो है वो हमारे लिए पाप रहितता दधात, उसने हमें पाप से रहित रखा हुआ है, किंतु हम अपने उस व्यवहार को जिसके कारण हम पाप रहित रह सकते हैं, ध्यान देने की बात है, जिस व्यवहार से हम पाप रहित रह सकते हैं, जिस देवता का जान करके हम पाप पापों से बच सकते हैं, यदि हम उनको नहीं जानेंगे तो पाप हमें दबा लेंगे, यही होता है। तो वही कह रहे हैं अथा न संयो अपो दधात्र और अपो दधात, पाप से रहित संयो ने हमें धारण कराए। संयो क्या है वो आगे बता रहे हैं, रपो रिप्रमिति पाप नाम नहीं भवते, दोनों पाप के नाम है वेद में, शमनम च रोगाणाम, संयो को खोल रहे हैं, संयो और अभी, तो आज उसका अर्थ खुलेगा आपको, तो संयो रवि सर्वंतु का अर्थ है शमनम च रोगाणाम, ये देवी आप हैं, ये जो आचमन कर रहे हैं तो प्रतिनिधि मात्र हैं, वो तो कुछ और ही चीज है, ये तो आप बाहर की उसकी क्रिया कर रहे हैं, वो तो अंदर है सारा सिस्टम, तो शमनम च रोगाणाम, ये देवी आप क्या करते हैं, रोगों को तो नाश करते हैं, और यावनम च भयानाम, अपाकरणम च यावनम नाम, दूरीकरणम च भयानाम, और भय कभी भी जीवन में नहीं आने देते, इसलिए आचमन करना चाहिए। अथापि संयु बारस्पत्य उच्चते, और संयु को क्या कहा है, बारस्पत्य, अर्थात संयु कौन है, किसी का नाम होगा तो बृहस्पति की जो संतान है वो संयु है, और बृहतामपति कौन है, वो बृहस्पति, उसकी संतान भी सामान्य नहीं होगी, तो वो भी पाप से बचाएगा। तत्संयो वृणीमहे गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञपते, तत्संयो नाम है यावनम च भयानाम समनम च रोगाणामर्थम, यह करोति तम आवृणीमहे, उसको हम स्वीकार करते हैं, गातुम यज्ञाय, यज्ञाय गातुम नाम प्राप्तये, और गातुम यज्ञपते, यजमानम च प्राप्तये, यज्ञ की प्राप्ति के लिए दो चीजें चाहिए, व्यक्ति रोगी नहीं होनी चाहिए और उसको डर नहीं होना चाहिए, डर कब होता है, जब धन नहीं है, होगा या नहीं होगा तो धन भी चाहिए, तो कौन कराएगा, वो बारस्पत्य संयु कराएगा। इत्यपि निगमो भवति गमनम यज्ञाय गमनम यज्ञपतये, इति अर्थो आयतः, तो ये अर्थ हो गया है। कल चौथा अध्याय पूरा ईश्वर की कृपा से हो सकता है, थोड़ा खींचेंगे तो पाठ को, परसों पांचवा चलेगा और एक पाद रोज होंगे, तो हम 16-17 तारीख तक छठे अध्याय को करेंगे, उसके बाद में फिर देवत कांड यानी देवताओं ने जो आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है वो किस रूप में है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इस पे चर्चा करेंगे और उनका हम क्या लाभ उठा सकते हैं। तो आज हमें दो विशिष्ट अर्थों का पता लगा, कौन कौन से थे, पिता शब्द का अर्थ पता लगा और यम और यमी कौन है, यम यमी कौन है सत्व ब्राह्मण के अनुसार,
यम सूर्य यमी पृथ्वी यमी,
वाक्य क्या है पूरा, हाँ, और अपनी तरफ से वाक्य जोड़ लो, यह एष सूर्य एष तपति, कौन है वो, हाँ, यह एष सूर्य तपति सह यम, और पृथ्वी वही यमी। तो जब पृथ्वी यमी होगी, सूर्य यम हो गया, तो अब अर्थ क्या हो गया वैज्ञानिक, कि भाई एक समय आएगा पृथ्वी सूर्य से मिलेगी, वो आज समय नहीं आ रहा है। तो सूर्य के माध्यम से विज्ञान कहा जा रहा है, जैसे परमात्मा जो है, आपको शायद अभी मंत्र क्योंकि देखे नहीं, कुछ आचार्य के माध्यम से बात सूचना देता है, कभी सेनापति के माध्यम से सूचना देता है, कभी स्वयं कहता है, स्वयं कब कहता है, यम कामये तम ब्रह्माणम, ये स्वयं कह रहा, बीच में किसी की अपेक्षा नहीं। ऐसे यहाँ सूर्य के माध्यम से उस घटना का स्वरूप बताया गया है कि जो भविष्य में होने वाली है, और इस घटना से ये भी लगता है कि ये दोनों पास पास होकर ही बात कर रहे हैं, पृथ्वी और सूर्य कभी बिल्कुल पास में थे तभी तो चर्चा हो सकती है, ये भी विज्ञान इससे खुलता है। ओम शांति, ओम का उच्चारण करेंगे, ओ सभी को साधारण नमस्ते।